Hare Krishna, this lecture on the Jaipur Yatra given at Karoli Dham on the glories of Radha Madan Mohan and Sanatan Goswami given by myself Prashant Mukund Das on 2nd April 2016.
जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णर गतिर मम राधा कृष्णर गतिर मम कृष्णस्य द्रविणम राधा कृष्णस्य द्रविणम राधा राधाया द्रविणम हरे राधाया द्रविणम हरे जीवाने निधने नित्यम राधा कृष्णर गतिर मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि राधा प्राणमयो हरि जीवाने निधने नित्यम राधा कृष्णर गतिर मम राधा कृष्णर गतिर मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि राधा जीवाने निधने नित्यम राधा कृष्णर गतिर मम राधा कृष्ण कृष्ण गेहस्तो राधा राधा गेहस्तो हरि राधा जीवाने निधने नित्यम राधा कृष्णर गतिर मम राधा कृष्णर गतिर मम कृष्ण चित्तस्थो राधा राधा चित्तस्थो हरि राधा चित्तस्थो हरि जीवाने निधने नित्यम राधा कृष्णर गतिर मम राधा कृष्णर गतिर मम नीलांबर पीतांबर धरो हरि पीतांबर धरो हरि जीवाने निधने राधा कृष्णर गतिर मम राधा कृष्णर गतिर मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णा वृंदावनेश्वरम जीवाने निधने नित्यम राधा कृष्णर गतिर मम राधा कृष्णर गतिर मम
तो ये जो भजन है युगलाष्टकम इसमें बहुत सुंदर बताया गया है कृष्ण प्रेममयी राधा तो राधा रानी जो है वो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम से बनी है तो राधा जी जो जिस चीज से बनी है वो क्या है प्रेम है ना शुद्ध प्रेम से बनी हुई है ना तो और जो हरि है वो राधा जी के शुद्ध प्रेम से बने हुए हैं है ना तो उनकी आनंद शक्ति है राधा रानी जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण ही मेरे नित्य आश्रय रहे राधा जी का कृष्ण का खजाना है और हरि राधा का खजाना है तो उनके खजाने हैं कृष्ण कृष्ण के खजाने हैं राधा रानी जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय रहे राधा कृष्ण की प्राण शक्ति से व्याप्त है और कृष्ण राधा की प्राण शक्ति से व्याप्त है जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय बने रहे राधा जी कृष्ण में पूर्णता विलीन है और कृष्ण या हरि राधा में पूर्णता विलीन है जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय रहे राधा और कृष्ण के शरीर में स्थित है और हरि राधा के देह में स्थित है। जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय हैं। तो एक बार हम बरसाना धाम में थे तो एक भक्त बता रहे थे, राधा रानी इज लाइक अ टंगस्टन वायर, बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर टंगस्टन वायर होती है राधा रानी, और बल्ब की जो कवरिंग है वो है कृष्णा। अभी खाली अकेला टंगस्टन वायर हो तो भी लाइट नहीं जलेगी, और खाली बल्ब हो तो भी लाइट नहीं जलेगी। तो जो पूरा प्रकाश है उसके पीछे दो चीजें हैं, एक तो बल्ब की कवरिंग और एक टंगस्टन वायर। तो शक्ति कौन है? टंगस्टन वायर। और बल्ब कौन है? शक्तिमान। तो वही है कृष्ण, राधा, राधा एक शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, दुई देह धारी एक शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्र प्रमाण करते हैं कि दोनों जो एक ही हैं लेकिन दो देह धारण करते हैं, एक कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है। तो इस तरह से इसमें भी वर्णन हुआ है, राधा और कृष्ण किस शरीर में स्थित है और हरि राधा के देह में स्थित है। भौतिकवादी लोग तो यही प्रश्न पूछते रहते हैं, राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? जब दो लोग एक ही हैं तो विवाह कैसे होगा? विवाह करने के लिए दो आदमी चाहिए ना। यहाँ तो बोल रहे हैं दो देह धारी एक शास्त्रीय प्रमाण, एक व्यक्ति ने दो देह धारण करी हुई है। तो आप अपनी शक्ति से शादी नहीं कर सकते, इसीलिए जब उन्हें विवाह करना होता है तो कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं द्वारकाधीश के रूप में, और राधा रानी अपना एक्सपेंशन करती हैं रुक्मणी के रूप में, और फिर रुक्मणी द्वारकाधीश का विवाह होता है। तो विवाह कभी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। राधा कृष्ण के हृदय में स्थित है और हरि राधा के हृदय में स्थित है। जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय रहे। राधा नीले रंग के वस्त्र पहनती हैं और हरि पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो दोनों एक नीलांबर धारी हैं, एक पीतांबर धारी हैं। जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय रहे। राधा वृंदावन की स्वामिनी है और कृष्ण वृंदावन के स्वामी हैं। जन्म में या मृत्यु में राधा और कृष्ण मेरे नित्य आश्रय रहे। तो हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय होना चाहिए कौन सा? कृष्ण, राधा कृष्ण के चरण आश्रय, बस यही हमें मिल जाए, ये हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? अंतिम ध्येय होना चाहिए, और कोई आश्रय हमारे को जरूरत नहीं है जीवन में। ठीक है, तो अभी हम राधा मदन मोहन और सनातन गोस्वामी महाराज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, सनातन प्राण धन हे, जय सनातन प्राण धन, जय सनातन प्राण धन हे, जय जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोपाल जियु, राधा गोपाल जियु राधे, जय राधा गोपाल जियु, राधा गोपाल जियु राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपाल जीव राधा गोपाल जीव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दकांतिकं वंदेहं श्री गुरुन् श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अभी हम राधा मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे तो आप लोग सब बोल सकते हैं जयताम सुरतो पंगों मर्मा मंदम तिर्गतः मत सर्वस्य पदं भोजो राधा मदन मोहनो जयताम सुरतो पंगो मर्म मंदर मतिर्गते मत सर्वस्य पदां भोजो राधा मदन मोहनो जयताम सुरतो पंगो मर्म मंद मतर्गते मत सर्वस्य पदां भोजो राधा मदन मोहनो वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे हरे कृष्णा। तो जो ये मदन मोहन मंदिर है, इस स्थान को बोलते हैं करौली। तो जिस तरह से वृंदावन में मदन मोहन जी कहाँ पर विराजमान है, यमुना नदी के किनारे केशी घाट और काली देह के पास में एक टीला है, द्वादश आदित्य टीला। वहाँ पर 12 प्रकार के सूर्य एक बार भगवान का दर्शन करने आए थे, इसलिए उसको बोलते हैं द्वादश आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, द्वादश आदित्य टीला। तो वो जो सनातन गोस्वामी का मंदिर है आपने देखा होगा, सबसे ऊंचा मंदिर वो है राधा मदन मोहन मंदिर। तो उसी प्रकार से आप जब यहाँ आए तो आपने देखा होगा करौली में भी नीचे से ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। तो मदन मोहन जी हमेशा ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे संसार में मैं कौन हूँ, सबसे ऊपर हूँ। आई एम द सुप्रीम। ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो मदन मोहन सबसे ऊपर विराजमान होते हैं, टॉप मोस्ट। तो यहाँ के जो ऑल्टर है उसके अंदर आपने 3 डीटीज देखे, एक है राधा रानी, उनके साथ में है मदन मोहन और उनके साइड में है ललिता सखी। तो सारे भक्त बड़े इम्पेशेंट हो रहे थे दर्शन करते वक्त, कौन से अल्टर में कौन है, कौन है, जल्दी बताओ इधर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, इधर बांसुरी कहाँ है, जाली कहाँ, प्रशांत कहाँ है। रिलैक्स, पेशेंस, धैर्यात, लेकिन धैर्य टूट जाता है, अच्छा है, भगवान के दर्शन के लिए धैर्य टूटना भी चाहिए। तो इस तरह से हाँ, इसमें 3 अल्टर है, एक लेफ्ट, एक सेंटर, एक राइट। तो जो सेंटर अल्टर है उसमें राधा रानी इधर है, बीच में मदन मोहन और उनके बिल्कुल इधर ललिता सखी है। और जो राइट में ऑल्टर है उसमें है राधा रानी, गोपाल जी और फिर इधर ललिता सखी। लेकिन जो फर्स्ट ऑल्टर है जिसमें आज मदन मोहन जी हैं, वो ऑल्टर किस लिए है, प्रश्न पूछ रहे थे, उसमें लड्डू गोपाल होंगे, प्रभु जी पूछ रहे थे कौन है, उसमें एक्चुअली राधा रानी विश्राम करती है अकेली। तो सुबह जब मंगला आरती का दर्शन होता है तो मदन मोहन जी के साथ राधा रानी नहीं होती है, राधा रानी का विग्रह इधर दर्शन देता है स्पेशली इस ऑल्टर में। लेकिन अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो बीच वाला ऑल्टर बंद करा हुआ है, वरना मदन मोहन और ललिता सखी रहते हैं और राधा रानी इधर आती है लेफ्ट में दर्शन देने के लिए। तो राधा रानी का एक अलग ऑल्टर बनाया हुआ है, वो अलग से दर्शन देती है, फिर बीच में राधा मदन मोहन और ललिता सखी और इधर राधा गोपाल और ललिता सखी, ठीक है। तो इस तरह से, तो राधा गोपाल कौन है, तो जब मदन मोहन जी जब इस स्थान पे आए तो ये जो कैसल है, जो किला है, ये एक राजा थे जिनका नाम है गोपाल सिंह। जैसे जयपुर में जो किला है उसका नाम है राजा जय सिंह का किला, इसलिए उसका नाम है जयपुर। और इस स्थान का नाम है, इसको बोलते हैं गोपाल सिंह का किला। ये जो है साले ब्रदर इन लॉ है जय सिंह के। तो बहुत ही सुंदर लीला है किस तरह से मदन मोहन जी यहाँ आते हैं। उनके आने से पहले इस स्थान पे राधा गोपाल जी का सेवा और पूजा होती थी, राधा गोपाल जी की सेवा पूजा होती थी। तो जो आपने दर्शन किए, ये सबसे पुराने डीटीज हैं राजपूताना के इस करौली शहर में जिनकी सेवा होती है। पर भगवान की इच्छा के बिना तो भगवान मूव नहीं कर सकते, तो मदन मोहन जी चलकर यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे आ गया। कंपटीशन हो रहा था बस में, एक भक्त बोल रहे थे चलकर आए, एक बोल रहे थे उड़कर आए, एक बोले अपने आप आए, एक बोले उठा के लाए, एक बोले डर के भगा के लिखे आए। लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी हम चर्चा करते हैं, कैसे मदन मोहन जी आते हैं। तो मदन मोहन जी ने कहा ये जो स्थान है ये बिल्कुल वृंदावन जैसा है कि नहीं है, आपको फील आ रहा है कि नहीं, और वृंदावन से भी ज्यादा गुह्यतम, क्योंकि वृंदावन तो अभी लस्सी पूड़ी वालों ने और डीएल नंबर ने, दिल्ली वाले डीएल नंबरों ने खराब कर रखा है, लेकिन ओरिजिनल वृंदावन ये है, हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ डीएल नंबर की गाड़ियां आ नहीं पाती हैं और लोगों को मालूम भी नहीं है कि यहाँ ओरिजिनल भगवान विराजमान है। तो ये गुह्यतम क्षेत्र है, छुपा हुआ है, इसीलिए ये आज भी सेक्रेड है, पवित्र है, प्योर है, और ये वृंदावन जैसा ही है धाम। यहाँ पर भगवान को मदन मोहन जी को इसलिए आना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के जो भक्त हैं उनका एकमेव कर्तव्य है बस, क्या? सुबह उठकर सबसे पहले किसको देखना? मदन मोहन जी को। मान पूछ सकते हैं पूरे गांव के लोग, मंगला आरती में तकरीबन 300 लोग दर्शन करने आते हैं, 300 devotees। आज कोई फेस्टिवल नहीं था, वर्किंग डे था, फिर भी इतना भीड़ थी, है ना। नॉर्मली मंगला आरती में 300 लोग दर्शन करने आते हैं, सोचो आप। और हमारे इस्कॉन में इतना प्रचार करते हैं तो आश्रय चलाते हैं हमारे डिवोटी, प्रभु जी, शिक्षा गुरु जी, गुरु जी महाराज जी, उसके बाद 30-40 मरे गिरे पहुंचते हैं मंदिर मंगला आरती में, हाँ भगवान से। तो शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि ये जो स्थान है यहाँ के लोग इंक्लाइन टूवर्ड कृष्णा, उनका एक ही इंक्लिनेशन है, एक ही झुकाव है, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और कृष्ण का भी इंक्लिनेशन हुआ उनके प्रति, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। और मदन मोहन जी ऐसे हैं कि अगर आप उनसे वार्तालाप करें, क्वेश्चन आंसर पूछें, उन्हें अपने घर इनवाइट करें तो चले जाते हैं, इनविटेशन पे भक्तों के घर जाते हैं। अनेकों कथाएं हैं यहाँ पर कि भक्तों के घर गए, मदन मोहन जी प्रसाद पाया फिर लौट आए, इस तरह से मदन मोहन रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ में। तो ये जो स्थान है ये वृंदावन से अभिन्न बताया गया है, और यहाँ पर रोज 8 बार भगवान को भोग लगता है, अष्ट प्रहर लीला जिसे आप कहते हैं, 8 बार भोग लगता है। पता है आपको 8 बार भोग लगता है भगवान को? हम तो 2 बार भी नहीं खिला पाते घर पे, 8 बार भगवान को भोग लगना चाहिए तो लगता है। यहाँ पे सुबह बाल भोग लगता है, उसके बाद में बाल भोग के बाद दर्शन आरती से पहले भोग लगता है, फिर दर्शन आरती के बाद में राजभोग लगता है, राजभोग के बाद फिर संध्या आरती से पहले दर्शन भोग लगता है, फिर उसके बाद में जो एक होती है पुष्प आरती उस पर भोग लगता है, फिर संध्या आरती से पहले भोग लगता है, फिर उसके बाद शयन आरती से पहले भोग लगता है, उसके बाद शयन आरती के बाद में रात को सोने से पहले दूध और पान भगवान को भोग लगता है। इस तरह से 8 भोग भगवान को लगने चाहिए, लगते हैं। वृंदावन में भी भगवान को 8 बार भोग लगते हैं और 8 बार आरती भी होती है भगवान की। भगवान को भोग पहले ऑफर किया जाता है फिर आरती होती है, पहले खिलाते हैं और फिर उनका गुणगान करते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान में भी घर में भी ऑफर करें भगवान को भोग ऑफरिंग करके फिर आरती हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये विग्रह है ये है सनातन गोस्वामी के विग्रह। तो सनातन गोस्वामी के विग्रह जो है वो चलकर यहाँ पर कैसे आते हैं, कौन लेके आता है, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं मदन मोहन जी की, और फिर बाद में सनातन गोस्वामी कौन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी के बारे में बताया गया है कि जो सनातन गोस्वामी के जो विग्रह हैं राधा मदन मोहन, उनको कैसे प्राप्त हुए। तो बताते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे उनके बेटे का नाम क्या है, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के बेटे का नाम है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बेटे का नाम है वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जब चौथी पीढ़ी कृष्ण भगवान के थे और कृष्ण भगवान प्रभास क्षेत्र से वापस द्वारका अपने से चले गए थे गोलोक धाम, तो जो उनके सारे यदुवंश तो समाप्त हो चुका था, लेकिन वज्रनाभ अकेले उनके प्रपौत्र थे, जो ग्रेट ग्रैंडसन। वो चाहते थे कृष्ण की दिव्य लीलाओं को देखना, उनके जगहों को जाना। तो परीक्षित महाराज जो कि पांडवों के ग्रैंडसन थे, अर्जुन के बेटे का नाम था अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे का नाम है परीक्षित। तो परीक्षित तीसरी पीढ़ी है और वज्रनाभ चौथी पीढ़ी है, तो उनके सीनियर थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज से उन्होंने पूछा कि मैं कृष्ण की दिव्य लीलाओं को देखना चाहता हूँ। तो परीक्षित महाराज ने कहा आप मथुरा के राजा बन जाइए। तो वज्रनाभ को मथुरा मंडल का राजा बना दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ तो कभी भी कोई जानवर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये तो जंगल का एरिया, मैं कैसे यहाँ रहूंगा। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मेरी सेनाएं आपका सहयोग करेंगी। तो सारी सेनाएं उनके साथ रहीं और वज्रनाभ ने अनेकों स्थानों पे घूम घूम के प्रार्थना करके तपस्या कर करके लीला स्थलियों को खोजा कि ये है भगवान की राधा कुंड, ये है भगवान का वृंदावन, ये है बहुला वन। ऐसे उन्होंने सारे वन 84 कोस उन्होंने ढूंढा, और इसीलिए 84 कोस का नाम उनके नाम से पड़ा वज्र मंडल, जैसे व्रज मंडल, वज्रनाभ के कारण व्रज मंडल पड़ा, व्रजनाभ वज्रमंडल। तो व्रज 84 कोस जो है ये वज्रनाभ के कारण नाम पड़ता है। तो उन्होंने काफी सारे डीटीज बनाए, मदन मोहन अपने हाथ से स्थापित किए, राधा गोविंद देव अपने हाथ से बनाए, गरुण गोविंद मंदिर जो है वो अपने हाथ से बनाए, लेकिन समय काल वो 5000 साल पहले बने थे। तो धीरे धीरे जैसे साल पे साल गुजरे, क्रिश्चियनिटी आई, बुद्धिज्म आया, लोगों ने वृंदावन की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो सारी जितनी भी मूर्तियां थी, मंदिर थे, वो मिट्टी के अंदर दब गए। लेकिन भगवान कहते हैं क्या, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्यों आते हैं युग युग में धर्म की संस्थापना करने के लिए? तो भगवान ने कहा युगे युगे, मैं हर युग में नहीं आता हूँ। कब आता हूँ? द्वापर युग में आता हूँ और फिर कलयुग में आता हूँ। अगर भगवान को कहना होता मैं हर युग में आता हूँ तो वो क्या कहते हैं? प्रति युगे। भगवान ने क्या कहा? युगे युगे, सिर्फ दो बार बोला। तो एक बार द्वापर युग में वो कृष्ण रूप में आते हैं और कलयुग में वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, है ना। तो क्या करने आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में? हाँ, संकीर्तन करने। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यंके संकीर्तनम प्राये यजन्ते ही सुमेधसा। तो यज्ञ करने आते हैं। कौन सा यज्ञ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो अपने नित्य पार्षदों को अपने साथ लाते हैं, जिसमें से मुख्य पार्षद 6 गोस्वामी हैं। कौन कौन से? रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे 6 गोसाई करे चरणार वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। सारी इच्छाओं की पूर्ति इन 6 गोस्वामियों के चरणों के वंदन करने से आती है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अग्रज है, इसमें से प्रमुख है। सनातन गोस्वामी जो है वो जब वृंदावन में आए तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी, लीला स्थलियों को खोजो, भगवान के विग्रहों को ढूंढो और शास्त्रों की रचना करो और व्रजवासियों को भक्त बनाओ। व्रजवासी भक्त नहीं है, भक्त बनाए गए चैतन्य महाप्रभु गोस्वामियों के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कैसे बनाए जाएंगे? तो शास्त्रों की रचना करके, प्रवचन करके। तो जो ये मदन मोहन विग्रह थे, ये सनातन गोस्वामी बैठ करके जिस स्थान पे काली देह मंदिर द्वादश टीला पे वहां भजन करते थे, है ना। और भजन करते करते वो रोज रोज बोलते थे कि भगवान मैंने सुना है शास्त्र में कि आपके जो चरण हैं वो साक्षात मदन मोहन रूप में हैं, जो आपका वक्षस्थल है वो साक्षात गोविंद रूप में है और जो आपका मुखारविंद है वो साक्षात गोपीनाथ रूप में है। तो मुझे आपके क्या चाहिए? चरण चाहिए, श्री चरण आपके, है ना। भजऊ रे श्री नंद, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन, हाँ अभय चरणारविंद रे, आपके चरण का वंदन मैं करता हूँ, है ना। हमारे एक ही अभिलाषा है कि कृष्ण के चरण प्राप्त हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा मुझे आपके चरण चाहिए। अब वो चरण 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 सोच रहे थे, सोचते सोचते उनको स्वप्न में एक बच्चा आया जिसने मोर पंख लगा रखा था और दिखने में बहुत ही ज्यादा प्रकाशमान था। उनको देख करके उन्होंने कहा सनातन, हा? क्या कहा? सनातन उठो और जाओ पासी के व्रज क्षेत्र में, दामोदर चौबे नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, मैं उनके घर में विराजमान हूँ और मैं तुम्हारी सेवा चाहता हूँ और मैंने चैतन्य रूप में आकर तुम्हें आदेश दिया है कि तुम मेरी सेवा करो। अब दामोदर चौबे जो थे उनको क्या पता कौन दामोदर चौबे, इतना बड़ा मथुरा वृंदावन, चौबे लोग थे वहां रहते थे वृंदावन में, सारे चतुर्वेदी चौबे, एक चतुर्वेदी हमारे भी है प्रभु जी, हम भी है। तो उस तरह से उन्होंने बोला, दामोदर चौबे का घर ढूंढा तो पता चला ये रहते हैं दामोदर चौबे। अब सनातन गोस्वामी रहते कैसे थे? हाँ वो भिक्षा टन करके रहते थे, भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते थे। मधुकरी, मधुकरी का मतलब है मधुमक्खी, एक फूल से कुछ चुनती है रस और फिर एक जगह इकट्ठा करती है, फिर चुनती है रस, तो मधुमक्खी जैसे करती है उसको जो कहते हैं मधुकरी, मधु की तरह कार्य करना मधुकरी। तो मांगते हैं आपसे रोटी मिल गई, आपसे नमक मिल गया, आपसे सलाद मिल गया, आपसे सब्जी मिल गई, प्रसाद बन गया, कुछ नहीं मिला तो पानी पी के भजन करके सो गए। तो इस तरह के भक्त सनातन गोस्वामी पहुंच जाते हैं दामोदर चौबे के घर और उनके घर पे जाकर भिक्षा मांगते हैं। तो दामोदर चौबे के घर में माता आती है, उनको रोटी देती है, तो कहते हैं मैंने सुना है आपके मथुरा और वृंदावन में सभी के घर में ठाकुर जी विराजमान है। तो बोले हाँ हमारे घर भी हैं, तो क्या मैं दर्शन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ दर्शन कर सकते हो। तो दूर से दर्शन कराया तो पहली बार उन्होंने राधा मदन मोहन का दर्शन किया, जैसे आज हमने पहली बार राधा मदन मोहन का, और देखते ही लोगों के होश उड़ गए। उड़ गए कि नहीं उड़ गए? हाँ, तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी के होश उड़ गए। अरे बोल राधा मदन मोहन, और वो तो बस रोने लग गए। अरे राधा मदन मोहन क्या दर्शन दिया आपने, अब आप मेरे पास कब आओगे ये बता दो। अब उन्होंने कहा ये तो इनके ड्यूटीज है, मैं कैसे ले जाऊं इनसे मांग करके। तो अब वो सोच में पड़ गए कि अब कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे। तो अब वो वहां से चले गए दर्शन पाकर, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। मदन मोहन जी के चरणों के अंदर दामोदर चौबे के बच्चे जो है ना खेल रहे थे उनके साथ में, जैसे गुड्डे गुड़िया के खेलते हैं ना, पत्ते चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं उनके ऊपर, मोटर कार चलाते हैं ना छोटे बच्चे, ऐसे रथ चढ़ा रहे हैं उनके शरीर के ऊपर, खेल रहे हैं उनके साथ में। तो उनको अच्छा नहीं लगा, विग्रह का अपमान हो रहा है ये तो, ऐसे बच्चे खेल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। अब वो रात को गए, पूरी रात नींद ही नहीं आई। तो आप लोगों को भी आज नींद नहीं आएगी, मदन मोहन का दर्शन करने के बाद में नींद नहीं आती किसी को भी, तो नींद नहीं आएगी। तो उनको भी नींद ही नहीं आ रही थी, कह रहे अब क्या करूं कैसे करूं, मदन मोहन जी कब आएंगे आप मेरे पास में। तो रात में मदन मोहन ने कहा देखो तुम्हारे बस की बात नहीं है, भक्तों के बस की बात नहीं है मेरे को छीन के लाना। अगर तुम चाहते हो सच में मेरी सेवा करना तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, ड्रामा। तो ड्रामा क्या करना है, कल तुम जाना उनके घर दोबारा भिक्षा मांगने, और मैं उनके बेटे को बुखार कर दूंगा, और तुम कहना मैं बुखार ठीक कर सकता हूँ। तो जब वो ठीक हो जाएगा बुखार, तो तुम कहना इसका दक्षिणा दो। बोले क्या चाहिए, कह रहे मदन मोहन दे दो। तो भगवान ने सारी चाल बनाकर दे दी उनको, ऐसे ऐसे चेस की चाल खेलना है, अरे ठीक है। दूसरे दिन वो पहुंच गए दामोदर चौबे के घर पे, और भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि दामोदर चौबे जो थे उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, वो घर में ही नहीं थे, और पत्नियां तो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, बच्चा ठीक हो जाए तो ले जा ठाकुर जी हमें नहीं करनी पूजा, बच्चे से प्यार करती है ना माए। तो उन्होंने जब दामोदर चौबे के घर वो पहुंचे तो देखा माँ रो रही है, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। उन्होंने कहा बाबा आगे चलो आज तो बच्चा बीमार है। कह रहे हाँ तुम्हारा छठा पुत्र छह नंबर वाला बीमार है मुझे मालूम है। तो उस जमाने में वैसे भी आजकल भी लोग ज्योतिषों के पीछे भागते हैं, तो उन्होंने सोचा कोई भी संत होता है अगर उसका आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चा ठीक हो जाएगा। पहले लोग दवाई पे कम भरोसा करते थे, भगवान पे ज्यादा, आजकल लोग भगवान पे कम भरोसा करते हैं दवाई पे। पहले डॉक्टर इंजेक्शन देता है, उसके बाद जब काम नहीं होता कहता है आप भगवान भरोसे। लेकिन होना क्या चाहिए, पहले भगवान भरोसे और दवाई भी ले ली साथ में। प्रभुपाद जी जब बीमार थे तो उनको लोग कचौड़ी लाके खिलाते थे, तो प्रभुपाद जी कहते थे उनके भक्त, प्रभुपाद आप कहते हैं जो मैं कहूं वो करना, लेकिन हम अपने गुरु की हत्या अपने हाथ से कैसे कर सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपकी तबीयत इतनी खराब है, आपको हार्ट अटैक होके चुका है, आप कचौड़ी खा रहे दाल की बनी हुई, आप नहीं रहेंगे इससे, आपका आपका जीवन चला जाएगा। तो डॉक्टर ने मना किया है, आप साफ साफ लिखा है प्रिस्क्रिप्शन में नो सॉलिड फूड नो ऑयली फूड। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा आई एम नॉट डॉक्टर दास आई एम कृष्ण दास, आई एम नॉट डॉक्टर दास, मैं वो खाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है, भगवान का भोग मैं खाऊंगा, मैं डॉक्टर की बात नहीं मानूंगा। तो प्रभुपाद जी ऐसे करते थे, उनको एक बार जबरदस्ती ड्रिप्स लगा दी गई थी, तो प्रभुपाद जी रात में ड्रिप्स निकाल करके भाग गए, कह रहे आई डोंट वॉन्ट एलोपैथिक मेडिसिन, वो नहीं लेते थे। तो इस तरह से भक्त भगवान पर भरोसा पूर्ण करते हैं और दवाई पर बहुत कम करते हैं। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी पहुंचे और उन्होंने कहा आपके बेटी की तबीयत मैं ठीक कर सकता हूँ, मुझे एक बार एंट्री दे दो घर में। अभी दूर से दर्शन किए थे, अभी पास से दर्शन करने का मौका मिल रहा मदन मोहन। जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने बेटे के सिर पे हाथ लगाया और मंत्र क्या बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तुरंत बेटे का ज्वर समाप्त हो गया और औरत की आंखों में तो आंसू, अरे महाराज सर कमाल है आप सर, एकदम ठीक कर दिया आपने तो मेरे बेटे को, हाँ आपने क्या कमाल किया है, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, इसी का तो वेट कर रहा। लाओ जी मदन मोहन जी मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं मदन मोहन, ये तो हमारे घर के विग्रह, कह रहे आप लोग सेवा नहीं करते, मुझे भगवान ने आदेश दिया है और मैं बंगाल से आया हूँ, मुझे मालूम है मदन मोहन है, मैं ले जाऊंगा सेवा करूंगा। कह रहे देखो अगर नहीं दिए तो क्या पता बेटा फिर बीमार पड़ जाए। हाँ नहीं नहीं बेटा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, आप ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि एक शर्त है इनको ले जाने के लिए, क्या? कि बिना किसी आदमी के उठाए हुए आप मदन मोहन को नीचे से ऐसे लिफ्ट करेंगे और फिर उठा के ले जाएंगे। अब उसने मन में सोचा, औरत इंटेलिजेंट थी है ना, चौबे की पत्नी थी, तो वो बोली, क्या बोली? बोली ये तो कमजोर आदमी है, खाता पीता नहीं है, काफी दिन से खाया नहीं है, भजन करने में लगा रहता है, छाछ वाछ पीता है, बाटी खाता है, यमुना की रेती खाता है, इसमें इतना दम ही नहीं होगा मेरे 3 फिट के ये मदन मोहन को उठा सके। मदन मोहन जी हट्टे कट्टे दूध दही खाने वाले, चौबे के घर के, कैसे लेके जाएगा? तो उन्होंने आदेश दे दिया। और अब ये भी सोच रहे थे उठेंगे नहीं उठेंगे, इन्होंने आंख बंद करी और नीचे से जैसे उठाया ऐसा लगा जैसे क्या उठाया, कमल का फूल उठाया है, कमल का फूल, ऐसे ऐसे उठाया और उठाकर, और अब ये ही नहीं पूछा ले जाऊं नहीं ले जाऊं, चलना शुरू कर दिया। वो कह रही है अरे रुको, तो उठा लिया, वो सुन ही नहीं रहे, वो बोल रहे कान बंद, और बस मदन मोहन जी हाथ में और लेके सीधा 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 द्वादश टीला पे भी चढ़ गए ऊपर, और लाकर स्थापित कर दिए, एक हट बना दी झोपड़ी और बस बैठा दिया। अब जब चौबे जी दोपहर को वापिस आए काम धंधे से, तो बोले अरे मदन मोहन जी नहीं दिख रहे आज, कहाँ चले गए, कहीं इधर उधर रख दिए क्या, बच्चे खेल खेलते रहते थे। बोले नहीं नहीं एक गोस्वामी आए थे, कोई फकीर सनातन नाम था, कह रहे हाँ हाँ वो लेके चले गए हमारे भगवान मदन मोहन को। ऐसे कैसे दे दिए मदन मोहन, ये कोई बापोती है, कोई भी आएगा किसी को भी, हमारे भगवान है वो। उन्होंने कहा वो उन्होंने बच्चे को ठीक किया। कह रहे तो क्या, पैसा ले लेता, धन ले लेता, भगवान लेके चला गया, चलो कोई बात नहीं मैं वापस लेके आता हूँ। तो अपने डंडा लेके हाथ में और वो चला गया, गया द्वादश आदित्य टीले पे चढ़ गया। ओ सनातन अरे औरत को कमजोर समझ के बेवकूफ बना के मदन मोहन चुरा लाया मेरे घर से, लाओ वापस दो हमारे मदन मोहन। तो वो बोले मदन मोहन जी के जो शिष्य सनातन गोस्वामी सेवक जी, देखिए मैं नहीं लाया हूँ, मदन मोहन जी की इच्छा थी कि वो मेरी सेवा ले। ऐसे कैसे, पिछले इतने सालों से हमारी पुश्तों में इनकी सेवा हो रही है, ऐसे किसी के साथ चले जाएंगे? नहीं नहीं लाओ दो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। कह रहे नहीं नहीं दो। कह रहे अच्छा ठीक है आपकी इच्छा है तो आप ले जाओ उठा के। तो उन्होंने कहा आपकी पत्नी ने भी कहा था उठा के ले जाओ, तो मैं ले आया, अब मैं भी कह रहा हूँ आप उठा के ले जाओ। तो उन्होंने नीचे से मदन मोहन जी को उठाया, पूरा जोर लगाया, लेकिन मदन मोहन जी उठे नहीं, हैरान हो गए दामोदर जी। कह रहे ये क्या हो गया, और रोने लगा वहीं बैठ के, और बेहोश ऐसा हो गया। और जब बेहोश हो गया तो होता है ना कई बार तंद्राएं आती हैं, एक होती है निद्रा एक होती है तंद्रा। तो हम लोग निद्रा में तो सोते हैं और तंद्रा में जप करते हैं, है ना, जप करना चाहिए ध्यान पूर्वक, लेकिन हम तंद्रा में करते हैं आए 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 तो इधर आज तंद्रा है, ये निद्रा की बहन है, तो तंद्रा आती है आंखें भारी कर देती है, आंखें बंद हो जाती हैं। तो उस तंद्रा में कई बार हमें सपने भी आ रहे होते हैं, है ना, तभी लोग बोलते हैं प्रभु जी माला में मन नहीं लगता। अरे माला में मन लगाया ही नहीं आपने, तो बेचारे थके होते हैं, 12:30 सोने देते हैं और उसके 2:30 उठा देते हैं, तो फिर कहाँ से नींद आए, नींद तो आएगी आएगी। तो उस तरह तंद्रा में वो जब कर रहे थे और उस तब वो बेहोश हो गया और तंद्रा आ गई उनको रोते रोते, और तंद्रा में बेचारा बोलने लगा भगवान आप यहाँ क्यों आ गए? बोले नहीं अब मैं सनातन की सेवा ही लेना चाहता हूँ, तुम वापस जाओ। तो समझ गए भगवान की इच्छा है और फिर वो वहां से चले गए। अब सनातन गोस्वामी रोज मदन मोहन जी की सेवा करते। एक दिन मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी पे नाराज हो गए कि सनातन मुझे उठा के ले आया दामोदर चौबे के घर में, बढ़िया खीर पुआ मलाई कोफ्ता सब बढ़िया मिलता था, अब तू सेवा करता है प्रेमी भक्त है ठीक है, लेकिन खिलाता क्या है, यमुना के रेत की बाटी बनाता है, गीली बाटी ना, और उसको फिर आंच पे सेकता है ऐसे और फिर उसको खिला देता है। कह रहे लोग नमोम विष्णु पदाय कृष्ण, आपने करके भोग लाया था, नमोम ब्राह्मण देवाय को ब्राह्मण, ये बाटी खा के मुंह ड्राई हो गया, कुछ गीला प्रसाद खिला दे भाई, कुछ तो इसमें कुछ नहीं खिला सकता, कम से कम नमक डाल देना, नमकीन तो कर दे इसको कम से कम, यमुना की रेती खा लूंगा तेरे हाथ से पर नमकीन होनी चाहिए। सनातन गोस्वामी नाराज हो गए, वाह जी वाह रोज खाते हो, आज जो है इतना तुम्हें ये हो गया, तुम्हें पता था कि मैं फकीर हूँ, मैं नाव में सोना भरकर बोट छोड़ आया, अब मैं यहाँ बैठकर कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, ना घर ना ठिकाना ना बीवी ना बच्चा, अब मैं कहाँ से तुम्हारे लिए भोग बनाऊं? आज बोल रहे हो कि नमक चाहिए, कल बोलोगे 56 भोग खिला मुझे, ऐसे तो मैं हो गया मेरा भजन तो। तो उन्होंने कहा रहना रहो नहीं रहना मत रहो, ऐसे करे सनातन गुस्सा में। तो भगवान बोले ठीक है सनातन नाराज नहीं होते, कोई बात नहीं मत दे नमक, कोई बात नहीं तू भजन कर आराम से। अभी भगवान की क्या इच्छा थी खाने की, नमक। तो उसी दिन रात्रि में बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान में यमुना नदी जो आज बहुत दूर है वो बिल्कुल द्वादश टीला के साथ में थी काली देह पे, और उसमें अब वो हिले ही ना चले ही ना, और बहुत तेज तूफान। अब वो उतरे दोनों लोग, उतरे एक चलाने वाला नाविक था और एक बिजनेसमैन रामदास कपूर, तो उतरा और उसने देखा इधर उधर, तो देखा ऊपर टीले के ऊपर एक रोशनी दिख रही है, तो पूरा जंगल का एरिया पानी पानी पूरे में तूफान चल रहा है पूरा, और ऊपर चढ़कर जा रहे हैं, और जब ऊपर चढ़ के गए तो वहां पर सनातन बाबा बैठे हैं, बाबा नाम था सनातन बाबा, तो सनातन बाबा भजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी नाव फंस गई है, कोई तरीका है बाहर निकलने का? आप तो यहाँ रहते हैं, रोज देखते होंगे किसी ना किसी की नाव फंसती है। कह रहे हाँ, इस संसार में सबकी नाव फंसी हुई है और सबकी नाव निकालने वाला एक ही व्यक्ति है, कौन?
कृष्ण
राधा मदन मोहन भगवान की, वही निकाल सकते हैं सबकी फंसी हुई नाव को, जाओ उनके पास और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करो। तो उसने कहा अच्छा, मदन मोहन जी के पास गया, देखा इतने सुंदर विग्रह है, बोला हे मदन मोहन मेरी नाव फंस गई है, अगर आप मेरी नाव निकाल दें तो सारा नमक आपका, भगवान तो नमक ही खाना चाहते हैं, तो पूरी नाव रुकवाली नमक की, इतना सा नमक नहीं मिला तो पूरी नाव। कहा मैं नमक भी आपको दूंगा और जो मेरा बिजनेस है, कल मेरी एक बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है इस नमक की, उससे जो धन आएगा उससे मैं आपका मंदिर भी बना दूंगा, बस आज मेरी जान बचा लो, मुझे यहां से निकाल लो। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने उस सनातन गोस्वामी के मदन मोहन को प्रार्थना करी, तुरंत उसका नाविक दौड़ा दौड़ाया, कपूर जी नाव निकल गई, नाव निकल गई, आइए आइए जल्दी आइए। तो बस वो धन्यवाद बोलता हुआ गया, बिजनेस डीलिंग करी और कुछ ही दिन बाद लौट कर आया और सनातन गोस्वामी को कहा कि मैं आपका ये मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर मंदिर बनाने के लिए धन देना शुरू किया और उस तरह से वो जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो पूरा का पूरा बना, द्वादश आदित्य टीला के राधा मदन है। लेकिन मदन मोहन जी यहाँ कैसे आ गए करौली में? तो 1748 में औरंगजेब का शासन था, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, तो चौथी पीढ़ी जो थी बड़ी खतरनाक थी। अकबर तो बड़ा सपोर्टिव था, अकबर की सेना में ये राजा जयसिंह थे जो जयपुर के राजा थे और वो बड़े भक्त थे और अकबर भी हेल्प करता था। जब जयसिंह जी ने कहा कि मैं गोविंद देव जी का मंदिर बनाना चाहता हूँ वृंदावन में 7 मंजिल का, तो अकबर ने छूट दे दी थी। इसीलिए अकबर के जो घर में आता था ना जितना भी आइटम लाल पत्थर, तो इसीलिए देखने में वृंदावन के सारे मंदिर कैसे लाल पत्थर के हैं, जैसा लाल किला है, तो किले के पत्थर आ जाते थे ट्रांसफर होके किसकी अथॉरिटी पे? जयसिंह जी के कहने पे। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और हम द्वारका मंदिर में आपसे बोले दिल्ली गवर्नमेंट से थोड़ा मेडिसिन लाओ फ्री में, तो आप बोले मैं ऑथराइज करा देता हूँ। ऐसे जयसिंह जी भक्त थे और उन्होंने ऑथराइज कराया कि जो भी लाल पत्थर है वो सारा वृंदावन में मंदिर बनाने में काम आएगा। तो वृंदावन में सबसे बड़ा मंदिर था राधा गोविंद देव जी का, 7 मंजिल का मंदिर, और उसके ऊपर बहुत बड़ा दिया जलता था, रोज घी का दिया। लेकिन जब लाल किले पे खड़े होते थे आगरा में, तो वहां से सिर्फ एक ही मंदिर दिखता था, गोविंद देव जी। औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, कहा ये इतना बड़ा तारा कहां से टपक गिरा है हमारे पास के एरिया में, मुझे मालूम नहीं। तो उसके सैनिक ने कहा ये तारा नहीं है, ये क्या है, ये तो गोविंद देव जी की ज्वाला है, देव उनकी दीपक है जो कि रात्रि दिन रात जलता रहता है 24 घंटे। कहा अच्छा, हिंदुओं की इतनी हिम्मत, मेरे लाल किले के सामने मंदिर खड़ा कर दिया? कह रहे जी आपने नहीं खड़ा किया, आपके 4 पीढ़ी पहले से अकबर के जमाने से खड़ा हुआ है। कह रहे जिन्होंने गलती की करी अब मैं रहने नहीं दूंगा। तो उसने अपने सैनिक भेज के गोविंद देव मंदिर की ऊपर की 5 मीनारें तोड़वा दी, 7 मंजिल का मंदिर लाल पत्थर का, मतलब कुतुब मीनार से भी बड़ा, उसके ऊपर की 5 मीनारें तोड़वा दी। और अब इस तरह से वो सारे मंदिर तोड़ने लगा, तो मदन मोहन मंदिर सब मंदिरों की तरफ भागा तोड़ने के लिए, तो सारे विग्रहों को वहां से ले जाने की जिम्मेदारी जयसिंह फैमिली की आई। तो वहां से जयसिंह जी ने ले जाना शुरू किया विग्रहों को, गोविंद देव जी जयपुर में आए, गोपीनाथ जी जयपुर में आए, मदन मोहन जी करौली में आए और राधा माधव जयदेव गोस्वामी के कनक वृंदावन में आए, माधवेंद्रपुरी जी के श्रीनाथ जी नाथ द्वारा चले गए। तो इस तरह से सारे विग्रह को ले जाया गया। अब जब राजा जयसिंह जी राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन, वो तीनों को चाहते थे कि इन तीनों विग्रहों को मैं ले जाऊं, क्योंकि 3 विग्रहों में हमारी पूरी भक्ति समाहित है, संबंध अभिधे अपर संबंध ज्ञान आता है राधा मदन मोहन से, चरणों से संबंध आता है जिसे कहते हैं संबंध ज्ञान, मतलब मैं कौन हूं और भगवान कौन है, संबंध, एक संबंध होना चाहिए। फिर आता है अभिधे, इनको पाने का रास्ता क्या है, प्रोसेस, वो पता चलता है गोविंद देव जी की कृपा से, जिनके जिनके आचार्य हैं रूप गोस्वामी, संबंध आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, अभिधेय आचार्य हैं रूप गोस्वामी, और प्रयोजन कि अगर मेरे को प्रोसेस पता चल गया तो टारगेट क्या है, तो वो है गोपीनाथ, हमें गोकूपी बनना है और भगवान हमारे नाथ है, तो वो है भगवान का मुखारविंद गोपीनाथ और उसके आचार्य है मधु पंडित गोस्वामी। तो इस तरह से इन तीन गोस्वामी जो है संबंध अभिधे और प्रयोजन, ये तीन आचार्य है और तीन विग्रह है भगवान के, गोविंद देव मदन मोहन और गोपीनाथ। तो इस तरह से, और बताया गया कि साक्षात भगवान के चरण मदन मोहन जी जैसे हैं, मतलब जैसे अभी आपने देखे बिल्कुल डिफरेंट है भगवान के, तो साक्षात गोलोक वृंदावन में भगवान जब है तो उनके ऐसे ही चरण है, ऑरेंज ब्लैक इस तरह के कलर भगवान, ऐसे ही पतले, इतने ही बड़े ऐसे भगवान के चरण है। और भगवान का वक्षस्थल वो हम कल सुबह देखेंगे गोविंद देव जी का, और मुख है भगवान का गोपीनाथ जी जैसा सेम। तो संबंध अभिधे परियोजन, इसीलिए दर्शन भी जब हम करते हैं तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पहले चरण फिर वक्षस्थल फिर फेस, संबंध अभिधे परियोजन, तो इस तरह से तीन में विभाजित। तो तीनों विग्रहों को लाने की तैयारी कर दी जयसिंह जी ने, तो जयसिंह राजा के साले थे गोपाल सिंह जो इस महल में रहते थे। अभी गोपाल सिंह जी का एक किला था, अब गोपाल सिंह जी के घर में दो विग्रह थे, राधा रानी गोपाल जी और ललिता सखी, जिनका आपने दर्शन किया, अब रोज उनके घर में पूजा होती थी, लेकिन आपने देखा होगा गोपाल जी और मदन मोहन जी देखने में एक जैसे हैं, क्योंकि जब भी वृंदावन जाते थे तो उनको मदन मोहन जी बड़े आकर्षक लगते थे, जैसे हमें भी जो चीज अच्छी लगती है ना उनका हम घर में ले आते हैं, जैसे हमारे अपने घर के जो विग्रह हैं उनका नाम है राधा गोविंद, क्योंकि राधा गोविंद बड़े अच्छे लगते हैं तो उनका नाम रख दिया राधा गोविंद। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के भी पर्सनल डिटीज का नाम था राधा गोविंद, भक्ति विनोद ठाकुर के पर्सनल डिटीज का नाम था राधा माधव, जयदेव गोस्वामी के डिटीज से इंस्पायर होकर, तो इस तरह से इंस्पिरेशन लेकर हम अपने डिटीज से संबंध स्थापित करते हैं, नाम स्थापित करते हैं, जैसे हमारे बच्चे का नाम रखते हैं तब संबंध स्थापित होता है, वरना पहला बेटा दूसरा बेटा तीसरा बेटा चौथा बेटा, चार नंबर वाले बेटे पानी ले आओ ऐसे तो नहीं बोलते, सबके एक नाम रखते हैं ताकि संबंध स्थापित हो। अगर हमारे घर में चार विग्रह हैं तो चारों के नाम होने चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए। तो इस तरह से गोपाल जी, गोपाल सिंह जो थे गोपाल की पूजा करते थे, लेकिन चाहते थे मदन मोहन आए, मदन मोहन आए, मदन मोहन आए। तो एक दिन रात्रि में गोपाल सिंह को भगवान ने कहा, मैं आने को तैयार हूँ, क्या तुम लाने को तैयार हो? कहा जी हाँ तैयार हूँ। जाओ तुम्हारे जीजा जी जय सिंह वो मुझे जयपुर ले जा रहे हैं, तुम कुछ करो और मुझे लेके आओ। तो जय सिंह के पास गए और बोले, देखिए जीजा जी आप मुझे दे दीजिए ना मदन मोहन, आप दो आप ले जा रहे हैं, बाकी और भी ले जा रहे हैं, एक मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा ये कोई खैरात थोड़ी है कि मुझे दे दीजिए, अरे तुम्हारे अंदर ताकत नहीं इनकी रक्षा करने की, कल को औरंगजेब की सेना ने करौली पे हमला कर दिया तो तुम तो देखते रह जाओगे, वो तोड़ देगा मदन मोहन को, अरे ऐसे कैसे उनकी रक्षा तुम नहीं कर पाओ। तो वैसे तो सबकी रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन वो भक्तों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम मेरी रक्षा करके अपना शुद्धिकरण करो, तुम मुझे भोग लगा के अपना शुद्धिकरण करो। हम भगवान को क्या खिलाएंगे, वो हमको खिलाता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें 56 भोग लगाते हैं तो ताकि हमारा शुद्धिकरण हो। तो इस तरह से गोपाल जी, गोपाल सिंह जो थे वो पहुंच गए वहां पर, और जयसिंह ने तीनों विग्रहों को एक अंधेरे कमरे में रख दिया, गोविंद देव मदन मोहन और गोपीनाथ, और उनके आंखों में पट्टी बांध दी, कहा तुम बड़े मदन मोहन करते हो, अभी पता चलेगा कितने बड़े भगत जी हो। कमरा बंद कर दिया, अंधेरा कमरा, आंखों में पट्टी बांध दी, कहा बिना देखे बिना सोचे बिना कुछ समझे बस जाओ टच करो और बता दो कौन से मदन मोहन है। पहली बार में अगर सही बताया तो मदन मोहन तुम्हारे, और अगर गलत हो गया तो नो सेकंड चांस। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, एक ही 50-50 मिलेगा, लाइफ लाइन मिलेगी, ये है कौन बनेगा कृष्ण का डिवोटी, तो इसमें एक ही लाइफ लाइन, बस वन टाइम चांस, एक बार। तो गोपाल सिंह जी एकदम ऐसे कर रहे थे, मदन मोहन कृपा करना, आंखों में ब्लैक फोल्ड, पाली पट्टी बांध दी, अंधेरे कमरे में धक्का दे दिया उनको, और अब तीनों विग्रह रखे थे गोविंद देव जी मदन मोहन गोपीनाथ, और इन्होंने ऐसे करके पांव पकड़ लिए। अभी चरण ही थी भगवान के साक्षात, तो चरण जैसे छुए
यही ओरिजिनल मिल गए। उन्होंने कहा यही है मदन मोहन, तो लाइट जलाई गई, मशाल जलाई गई, तब देखा तो सच में वही मदन मोहन थे। तो जयसिंह तो अब कुछ बोल ही नहीं सकते थे, एकदम स्पीचलेस हो गए, शब्द ही नहीं है। बोले ठीक है जी, मदन मोहन जी आपके हुए, अरे थैंक यू। कह रहे लेकिन तुम अकेले मत ले जाना, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ इनको ले जाने का, तो मैं भिजवा दूंगा। अरे ठीक है, अब जिया जी ने एग्रीमेंट दे दिया है तो भिजवा देंगे। तो बैलगाड़ियों पर, एक एक बैलगाड़ी पर अलग अलग विग्रह को ले जाया गया वृंदावन से। गोविंद देव जी का एक महल बनाया गया, मदन मोहन जी का एक महल बनाया गया, गोपीनाथ जी का एक महल बनाया गया, और बैलगाड़ियां आगे सैनिक पीछे सैनिक चलना शुरू कर दिया और भजन गाते हुए जा रहे थे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस तरह से जब वो चल रहे थे, तो चलते चलते पहले राधा कुंड के किनारे आए प्रसाद लेने, जैसे हम लोग भी चलते हैं प्रसाद लेते हैं फिर चलते हैं प्रसाद लेते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने प्रसाद लिया राधा कुंड पे और कुछ दिन वहां आराम किया। तो बताते हैं 4 से 5 दिन सारे विग्रह राधा कुंड के किनारे थे, इसीलिए आप वहां जाते हैं तो देखते हैं घर के अंदर लिखा श्री श्री राधा गोविंद, लिखा श्री श्री राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ। एक्चुअली वहां भगवान रुके, तो जहां भगवान सोचते हैं जिस जगह आने का, जिस जगह देखते हैं, जिस जगह रुकते हैं, वो सब दिव्य हो जाती है। तो वहां पर फिर उनके जैसी डिटेल्स लगा दी गई, लेकिन ओरिजिनल डिटेल्स मूव कर रही हैं, ना वो वृंदावन में थी ना वो राधा कुंड में थी। फिर चलकर वो कहां आती हैं, काम्यवन में तीनों विग्रह हैं, गोपीनाथ मदन मोहन और गोविंद देव जी। तो वृंदावन में एक देवी है जिनसे वृंदावन सारा सजा हुआ है, उनका क्या नाम है, वृंदा देवी, तुलसी महारानी वृंदा देवी। तो वृंदा देवी जो थी, उनका विग्रह रूप गोस्वामी ने स्थापित किया था वृंदावन में, तो उनका मूर्ति को भी ले जाया गया वृंदावन से। अब उनकी मूर्ति भी चल रही थी, लेकिन काम्यवन पहुंचकर वृंदा देवी बोली, कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वो तो ब्रह्मांड नायक है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए हर जगह वृंदावन है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो तब भी वृंदावन है, वो लंदन में हो तब भी वृंदावन है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ यात्रा निकाल दी, उन्होंने कहा जगन्नाथ उड़िया नाथ नहीं है कि खाली उड़ीसा वाले का हमारे नाथ है, तो भगवान जगन्नाथ तो जगत के नाथ है, पूरी जगत के नाथ है, इसलिए न्यूयॉर्क वालों के भी है, सैन फ्रांसिस्को वालों के भी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सबके भगवान है, तो इसलिए वो तो जा सकते हैं। लेकिन वृंदा देवी बोली, मैं वृंदावन त्याग कर नहीं जा सकती, तो मैं वृंदावन में ही रहूंगी। तो वृंदा देवी वहां से मूव नहीं हुई है, इसलिए वृंदा देवी का ओरिजिनल टेम्पल काम्यवन के अंदर है, हमारे कुछ भक्तों ने दर्शन किया। तो वृंदा देवी अभी इस टाइम विराजमान है काम्यवन में, ओरिजिनल डीटी ऑफ वृंदा देवी जो कि रूप गोस्वामी ने स्थापित किया था। लेकिन जो मदन मोहन जी थे, गोविंद देव जी थे और गोपीनाथ जी और राधा माधव, सबकी डीटीज की गाड़ियां चल रही हैं, सब बोलते जा रहे हैं, भगवान का जय जयकार लग रही है। रास्ते में जैसे होता है ना तूफान सा आया, हमारी भी दो गाड़ियां कल जैसे अलग हो गई थी, एक गाड़ी अलग हो गई, एक गाड़ी इस रास्ते पे जा रही थी, एक गाड़ी इस रास्ते पे जा रही थी, तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली क्या हुआ, गोपीनाथ जी की गाड़ी जयपुर के रास्ते गई, गोविंद देव जी की इधर गई, राधा माधव की इधर गई, लेकिन जो ये गाड़ी थी कौन सी, राधा मदन मोहन की, ये मुड़ने लगी, क्योंकि जयसिंह ने ऑर्डर दिया था गोपाल सिंह को, बोलो उसकी बस की बात नहीं है, हाथ लगाने से क्या होता है, बता दिया मदन मोहन मेरे हैं, लेकिन रक्षा करने की शक्ति तो मेरे पास है, इसलिए उसको नहीं दिए जाएंगे, ले जाओ इनको जयपुर। लेकिन मदन मोहन जी तो आना चाहते थे, उनको स्वप्न में आकर कई बार बोला मेरी सेवा करो गोपाल जी को, तो गोपाल सिंह बेचारे वेट कर रहे थे कि कब जीजा जी भेजेंगे, लेकिन जीजा जी तो ले जा रहे थे जयपुर। अब भगवान ने देखा, अरे मैं तो जयपुर के रास्ते जा रहा हूं, तो उन्होंने तूफान ले आए और तूफान लाकर सैनिकों को भटका दिया, और सैनिक चलते रहे, कह रहे जयपुर नहीं आया, जैसे आज भक्त बोल रहे थे करौली नहीं आया, 6 घंटे हो गए। तो चलते गए, अचानक से ये जगह आ गए गोपाल सिंह के किले के सामने, कहा लगता तो किसी राजा का महल है, सैनिकों ने कहा किसका महल है, कह रहे जी आपके जिया जी के साले जो है वो है, गोपाल सिंह जी का महल है। कह रहे अच्छा उनका महल है, गोपाल सिंह जी से बोले कि है ना हम जा रहे थे जयपुर, रास्ता भटक गए, क्या कुछ खाने पीने को मिलेगा, कह रहे रास्ता क्या कर रहे थे जो रास्ता भटक गए, कह रहे हम भगवान के विग्रहों को ले जा रहे थे। अब उन्हें तो पता नहीं था सैनिकों कौन गोविंद है कौन गोपीनाथ कौन मदन मोहन, कह रहे कोई भगवान जी है बैठे हैं अंदर गाड़ी में और वो आए हैं और उनको ले जाना चाहते हैं, वो आकर रुक गए यहाँ पर बाहर जहां हम खड़े थे स्थान पे, मदन मोहन जी की बैलगाड़ी रुक गई आकर और सैनिक रुके हुए, सब सैनिक पानी वानी पी रहे हैं प्रसाद खा रहे हैं, और गोपाल जी खुद आए और उन्होंने खोला और देखा तो कौन थे,
राधा
मदन मोहन भगवान की। मदन मोहन जी अपने आप अपनी इच्छा से गोपाल जी के घर गए, कह ले कर सेवा मेरी, और उन्होंने फिर उठाया और उठाकर कहां स्थापित कर दिया, जय सिंह को पता चला, मदन मोहन जी पहुंच गए, कह रहे नहीं ये कोई चाल है इसकी, इसने अपने सैनिकों को कुछ ब्राइब पैसा खिलाया होगा मेरे सैनिकों को और बेचारे भटक गए होंगे, ले गया उनको उधर, मैं अभी ले आता हूं। तो जय सिंह जी स्वयं आए और बोले देखो अच्छा नहीं है, मैंने कनक घाटी बनाई है और उस घाटी में गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन तीनों साथ में रहेंगे तुम्हारे। कह रहे अच्छा जिया जी आप बड़े ले जाइए, तो उन्होंने बहुत जोर लगाया लेकिन नहीं उठा पाए और फिर मदन मोहन जी जिस जगह आपने देखा यहीं स्थापित हुए। तो इतने समय से 1748 से मदन मोहन इसी स्थान में विराजमान है। श्री राधा मदन मोहन की
जय।
इस तरह से मदन मोहन यहाँ पे, मदन मोहन की अनेकों पास टाइम्स हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में बताया जाता है कि जब मदन मोहन जी यहाँ आए तो उससे पहले यहाँ के सारे कुएं जो थे ना सूखे हुए थे, राजस्थान में पानी नहीं होता। कल भी जब आ रहे थे यात्रा के समय तो सारे भक्त बात कर रहे थे यहाँ पानी तो नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा, रेगिस्तान है कि राजस्थान है, तो इसी तरह से बातें कर रहे थे, प्रजल पाए वैसे तो लेकिन करते हैं। तो उसके बाद जब वो यहाँ आए तो जो कुआ था ना सारे कुओं में पानी आ गया ऑटोमेटिकली मदन मोहन जी के आते, तो लोग आए बोले एक कुआ तो ऐसा था अंधा कुआ, ना पानी था, वहां पे सांप रहते थे, पता नहीं कहाँ चले गए रातों रात, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो गोपाल जी ने कहा मदन मोहन जी आए और मैं उनके लिए मटके भर के पानी लाया, जैसे अभी राज छप्पन भोग लगा था तो मटके पानी, तो आज भी उसी कुएं से पानी आता है मदन मोहन जी के लिए, जिस मटके में मदन मोहन जी के आते ही पानी आ गया था और आज भी ना कभी उसका पानी कम हुआ है, चाहे पूरे राजस्थान में अकाल पड़ जाए पानी का, बस उस कुएं का पानी समाप्त नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। और बताते हैं एक भक्त है जिनका नाम था तजकन, मुसलमान व्यक्ति थे तजकन मुसलमान, तो वो रोज दर्शन करने आते थे, प्रसाद चढ़ाते थे भगवान को, भोग लगाते थे। और लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो पुजारी है, पुजारियों को कई बार अहंकार हो जाता है, भगवान की सेवा करते थे, भगवान तो मेरे हैं खाली, दूसरे दर्शन वालों के नहीं है। तो इस तरह से एक दिन पुजारी ने उस मुसलमान को रोक दिया, कहा तुम रोज मंदिर आते हो, तुम हो कौन? कहा जी मेरा नाम है तजकन। तजकन मतलब इस्लामिक हो, मुसलमान हो? कह रहा औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, मुसलमान मारो, भगा दिया धक्का देके। और रोने लगा, कहा रे भक्त हो, भक्त का कोई धर्म होता है, कोई रिलीजन होता है? भक्त तो आत्मा से परमात्मा का भजन करता है, भाई क्यों ले जा रहे हो, मुझे यहाँ रहने दो, दर्शन करने दो भगवान का। भक्तों ने पुजारियों ने धक्का देके निकाल दिया, नहीं आने दिया। तो तजकन रोने लगा और अपने घर पे जाकर इंतजार करने लगा कि कब राधा मदन मोहन का दर्शन होगा, और रोते रोते बुखार भर गया, ना प्रसाद खाए ना पानी पिए, घर वाले कहे प्रसाद खा लो पानी पी लो, करे जब तक मदन मोहन का दर्शन नहीं होगा ना मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो इस तरह से उसको बहुत ज्यादा ऐसा प्रेम आने लगा और बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा। रात्रि में जब उसने कई दिनों तक नहीं खाया तो एक दिन देखा कि यहाँ के जो गार्ड है वो उसके घर पे आए, चांदी की प्लेट में 56 भोग लगा हुआ है, जैसे हमारे लिए लगा हुआ है, तो 56 भोग चांदी की प्लेट में लगाकर मदन मोहन जी चले आ रहे हैं गार्ड की भेष में, और कहा ये लो मुझे मंदिर से प्रसाद भिजवाया पुजारी ने। कह रहे कल तो धक्के मार रहा था, तीन चार दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, अच्छा हो सकता है दयालु होगा, सोचा हो खिला दूं कुछ, तो मेरे लिए 56 भोग भेजा है। तो बेचारे जल्दी जल्दी उठ के जल्दी जल्दी खा लिया, मेरे बाद में पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो पहले प्रसाद पाया फिर उसके बाद बात पूछी। तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम जा रहे हैं, प्रसाद पाके प्लेट पहुंचा देना। अब यहाँ पर जब ऑल्टर खुला सुबह तो भगवान को जो बाल भोग लगता है तो उनकी जो प्लेट है वो गायब है, तो सारे लोग बोले गार्ड को बुलाओ, गार्ड तुमने देखा कहाँ गया, भंडार गृह चेक किया, ये किया, किचन चेक किया, कहीं ताली नहीं मिल रही है, कहा ढूंढो ढूंढो कहाँ है। अब तजगन जो थे वो सोचे कि अरे गार्ड आया था मंदिर से, चांदी की प्लेट में खाना दे गया, पहले मंदिर से बाहर निकाला था, कम से कम मदन मोहन जी के बारे में तो सुन पाता हूँ, उनके भक्तों को तो देख पाता हूँ, अगर पता चला मैंने मंदिर की प्लेट भी रख ली है तो फिर मेरे को शहर से ही बाहर निकाल देंगे करौली से, तो मुझे प्लेट वापस देनी चाहिए। और यहाँ पर ढूंढ रहा पिट रहा था कि कहाँ गई प्लेट, कहाँ गई प्लेट। तो इतनी देर में गार्ड के पास आ गया, उसने कहा प्लेट ले लो। तो उस टाइम वो गार्ड नहीं था जो प्लेट लेके गया था, क्योंकि कोई भी गार्ड प्लेट लेके गया ही नहीं था। कौन गए थे? मदन मोहन जी स्वयं गए थे। अब मदन मोहन जी तो बांसुरी लेके खड़े हो गए अपने, बोल नहीं रहे, और उधर गार्ड जो है बोल रहे हैं यही है चोर, पकड़ लो इसे, क्यों तूने हमारी चांदी की प्लेट चुराई, एक मंदिर से क्या निकाल दिया, मंदिर की चीजें चुराने लगा, तेरे जैसे चोर बहुत देखे हमने, अभी पता चलता है, नानी याद आ जाएगी, सब कुछ ठिकाने का है, जेल ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और बेचारा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा रोने लगा। तो जो पुजारी था ना, उसको भगवान ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को, पहले तो तूने रोक दिया आने से, उसके बाद मैंने उसको प्रसाद खिलाया तो अब तूने उसकी पिटाई कर दी, ये कोई तरीका है भक्त के साथ बिहेव करने का? अगर तू मेरी सेवा में रहना चाहता है और जिंदा रहकर, तो चुपचाप से उसको मंदिर में एंट्री दे और उसके बाद कभी उसको रोकना मत। तो पुजारी दौड़ा दौड़ा गया, बोला तस्कर नाम के भक्त कौन है? तो बोला भाई मैं ही हूँ, पिटाई कर रहा हूँ अभी भी नहीं पता मेरी, मैं ही हूँ। अरे अच्छा, कम से कम मुझे अब मंदिर में, बोले अब आपके मंदिर में एंट्री चालू हो गई है? कह रहे नहीं नहीं अब नहीं आऊंगा, मंदिर में आऊंगा आप पीटोगे। कह रहे नहीं, भगवान ने स्वयं कहा है। तब से वो जो व्यक्ति है उनके आज भी किसी भी मुसलमान हिंदू किसी को भी मंदिर में रोका नहीं जाता, सबको एंट्री फ्री है। तो ये भगवान मदन मोहन की अनेकों लीलाएं हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कालकुंड। तो जो कालकुंड नाम के आदमी थे उनके बेटे को सांप ने डस लिया। अब इतने पैसे नहीं थे कि सांप के डसे का इलाज कराने जयपुर जाए, है ना, हमें भी डस ले तो हम भी नहीं, अगर इतनी दूर है कौन जाए जयपुर, बस में हालत खराब हो गई। तो कह रहे जयपुर में हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है कि मैं अपने बेटे का शरीर कहाँ छोड़वा दूं, मदन मोहन जी के टेम्पल। तो उठा लाया, सांप ने काटा है, बच्चा बेहोश है, उठा के कालकुंड जो है चले आए और लाकर मदन मोहन जी के चरणों में रख दिया। और मदन मोहन जी ने देखा कि बेटा लेटा हुआ है, तो पुजारी जो था ना ऐसे बैठा था आंख बंद करके, हमें लगता है ध्यान कर रहा पर वो सो रहा था। तो पुजारी के मन में आकर बोला भगवान ने इसको बोलो चरणामृत और तुलसी। तो जो हमने चरणामृत लिया प्रभु जी ने सबको पिलाया, और तुलसी इतनी पावरफुल है ना, ये इतनी पावरफुल है कि उस बच्चे को जैसे ही खिलाया गया ना वो बच्चा वापस जीवित होकर बैठ गया। हरि बोल, राधा मदन मोहन की जय। तो ये मतलब जितनी ट्रांसेंडेंटल प्लेस है ना, इट इज वेरी वेरी ट्रांसेंडेंटल, बहुत ही दिव्य स्थान है। इनको देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए, इसको देखने के लिए हमें भौतिक दृष्टि नहीं चाहिए। तो एक लीला और सुनाएंगे, उसके बाद में आपकी इच्छा होगी तो फिर सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, वरना बंद करेंगे। कि एक गुजरी लेडी थी, गुजरी मतलब गुजर इलाका है, यहाँ पर गुजर लोग होते हैं, जाट गुजर जिन्हें बोलते हैं गुजर। तो गुजरी जो थी वो तकरीबन 100-150 साल पहले की कथा है, बहुत पुरानी नहीं की, 4000 साल 5000 साल पहले। और गुजरी लेडी रोज भगवान के लिए दूध लेके आती थी, बकेट ऑफ मिल्क दूध, और दूध लेकर आकर भगवान को भोग लगाती थी, लीजिए भगवान ठाकुर जी दूध पीजिए दूध पीजिए। और कई सालों तक उसने दूध दिया भगवान को। अब घर में गाय भैंस थी, दूध निकालती थी लाकर भगवान को देती थी, उसका कुछ लगता नहीं था, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बुखार आ गया। अब ये तो ह्यूमन बॉडी है, बुखार आ जाता है। अब बुखार आया तो कुछ दिन नहीं आ पाई वो मंदिर में सेवा करने। जब नहीं आई ना तो रात को मदन मोहन जी उसके घर पहुंच गए, कह रहे वो आती नहीं आजकल दूध देने के लिए, क्या हो गया? बोले मैं बीमार हूँ भगवान, आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, सब ज्ञात है आपको। कह रहे ठीक है, लेकिन दूध तो तेरे हाथ का अच्छा लगता है, चल दे अब। तो बेचारी उठी खाट से, दूध गर्म किया, उबाला, भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, चादर बिछाया नीले रंग का और कहा लो बैठ जाओ। भगवान बैठ गए उसके ऊपर और दूध पीने लगे, और दूध पीते 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 उनको याद आया ये तो शंख की आवाज आ रही है और मंगल आरती का टाइम हो। खैर वो रात्रि निकल गई। तो जल्दी जल्दी में क्या कि जैसे आते हैं ना शॉल डालते हैं और उसके बाद में हम सारी ड्रेसिंग करके आते हैं, बट जब हम घर वापस पहुंचते हैं तो शॉल भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, तिलक भी हटिया होता है। ऐसे भगवान जब गए शयन आरती का श्रृंगार लेकर, तो बिल्कुल सेट था सब कुछ, पीले वस्त्र पीतांबर धारी, लेकिन जब वहां से चले जल्दी जल्दी में तो पीतांबर वहीं गिर गया और नीला कपड़ा ओढ़ करके वापस आ गए। यहाँ पर पट खुला तो किस रंग के वस्त्र पहने भगवान ने? नीलांबर। अभी हमने पढ़ा था राधा नीलांबर धारी है और कृष्ण पीतांबर धारी, देखा कि यहाँ तो राधा भी नीलांबर धारी है, कृष्ण नीलांबर, ये क्या हो गया आज, बड़ा कमाल है। अब पुजारी सोचने लग गया आज ठाकुर जी ने क्या किया, और इतने सादा सा कॉटन का कपड़ा कहाँ से लिया है, ये क्या हो गया, ये मैंने रात को तो नहीं पहनाया था। बेचारा सोचने पड़ गया, आरती करी, टन 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 आरती हो गई। आरती होने के बाद में अभी सोचा क्या करूं, अभी गुजरी ने सोचा कि अब मैं क्या करूंगी, भगवान के दिव्य वस्त्र मंदिर में दे आती हूँ। तो बेचारी आई देने के लिए, कहा ये पीले वस्त्र छोड़ आए थे हमारे घर पे। ये पीले वस्त्र हमारे घर पे छोड़ाए थे। तुम्हारे घर पे कौन छोड़ाए थे? कह रहे किसके हैं? तो मदन मोहन के। तो तुम मदन मोहन छोड़ के आए थे? अच्छा, मदन मोहन तुम्हारे घर गए। इस तरह से भगवान भक्तों के घर भी जाते हैं। यहाँ पे मदन मोहन आपके साथ भी दिल्ली जा सकते हैं, उनके लिए डिस्टेंस इज नॉट मच। जैसे लोग पूछते हैं वृंदावन वहां, गोवर्धन वहां, हालत खराब हो जाती चक्कर काटने में, आने जाने में। भगवान रहते थे नंदगांव में, गाय चराते थे वृंदावन में, रास करते थे गोवर्धन पे। अरे कम आदमी थे, राक्षस थे, ऐसे बोलते तो है ना। भगवान जो है वो दिव्य है, और भगवान की रास स्थली भी दिव्य है। भगवान के चरण कैसे है? कमल चरण। तो कमल कैसा होता है? खिलता है फिर बंद होता है, खिलता है फिर बंद। तो भगवान जब सुबह निकलते थे तो वृंदावन खिल जाता है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम, तो रमणीय स्थान है। कमल जैसे दल के ऊपर राधा और कृष्ण बैठते हैं विराजमान, सेंटर ऑफ दी कमल लोटस। और जब वो ऐसे खिल जाता है तो सुबह खेलते खेलते चले गए, दो चार घंटे दस घंटे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं खेलने के लिए। लेकिन रात हो जाती थी, अरे नंदगांव से आप जाओ वृंदावन, और वृंदावन से आगे महावन, और उसके आगे और चले जाओ बहुला वन, भांडेर वन में लीला कर रहे हैं। वहां से कार में भी अगर आओ ना, वो आपको कम से कम 4 से 6 घंटे लग जाएंगे वापस नंदगांव आने में। और भगवान ने ये जंप मारी और आ गए थे वृंदावन। कैसे आ जाते थे? क्योंकि जैसे यहाँ भगवान है और यहाँ नंदगांव है। अब रात्रि हुई ना तो लीला धाम अपने आप को ऐसे समेट लेता कमल की तरह ऐसे। और अब यहाँ से भगवान ने एक कदम ही रखना और एक कदम में वापस नंदगांव। हरी बोल, हरी बोल। इस तरह से भगवान का जो धाम है, भगवान दिव्य है, भगवान की लीलाएं भी दिव्य है। और इसीलिए देखो राजा जयसिंह ने, जो ये जयपुर है जयसिंह महाराज ने बसाया, उन्हीं के नाम से जय पड़ा जयपुर। तो उन्होंने ये जो लाल पत्थर के है ना पूरा प्रोटेक्ट किया, हर जगह लाल पत्थर लगा दिया। अकबर से फ्री मिल रहा था, अकबर की उधर से, तो उधर सारा फ्री। ये पूरा जयपुर उन्होंने प्रोटेक्ट किया ताकि कोई अंदर ना आ सके, इसके अंदर प्रोटेक्ट कर लिया इसको पूरा का पूरा। तो इसलिए पूरा पिंक कलर का है। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि सारे विग्रह गुप्त वृंदावन जयपुर में है, राजस्थान में, और इसका एक नाम है पिंक सिटी। तो ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं, ये मेरा मेंटल स्पेकुलेशन हो सकता है। मैं सोच रहा था भगवान के चरण को हम बोलते हैं कमल चरण। कमल का कलर क्या होता है? तो भगवान रहते कहाँ हैं? जयपुर में। तो उनके चरण जहाँ रहते हैं, जहाँ वो विराजमान होते हैं, तो वहां का कलर कैसा होना चाहिए? पिंक। एंड दैट इज व्हाई जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। मेरा थॉट है, ऐसा थॉट है, स्पिरिचुअल थॉट। जैसे जैसे एक बार हम नर्सिंग होम होते हैं ना, नर्सिंग होम, तो नर्सिंग होम के भाई मेंटल स्पेकुलेशन मेरा चलता रहता है, माफ करिएगा। तो नर्सिंग होम में जाते थे रोज, जाते थे आते थे। तो एक दिन सोचा बार बार हम बीमार पड़ते हैं, नर्सिंग होम जाते हैं वापस आते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, भगवान कौन से रास्ते ले जाता है। फिर समझ में आया नर्सिंग होम मतलब नर्सिंग भगवान का घर। तो मैंने कहा भगवान के घर में आते हैं, भगवान के घर से आते हैं, भगवान के घर से आते हैं, भगवान के घर। तो जैसे बोलते हैं गोविंद देव जी का दर्शन करने के बाद, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जो गोविंद देव जी का दर्शन कर लेता है वो फिर अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने ऑफिस, अपनी जॉब, किसी का नहीं रहता। इसलिए उन्होंने लिखा है कि अगर आपको अभी भी अपने परिवार से प्रेम है तो वृंदावन मत जाओ, वृंदावन जाओ तो यमुना के तट पर मत जाओ, यमुना के तट पर भी जाओ तो यमुना जी के तट पर केशी घाट मत जाओ, और केशी घाट भी जाओ तो वहां गोविंद देव जी का दर्शन मत करो। और अगर आपने एक बार गोविंद देव जी का दर्शन कर लिए तो फिर अब आप भौतिक संसार के, तो इसलिए कल आप लोग मत जाना मंगलारती, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर आपके ऑफिस से रेजिग्नेशन आएंगे, नौकरी छूट जाएंगे, परिवार वाले छूट जाएंगे। तो जो अभी परिवार को चाहता है उनको सबको सोना चाहिए कमरे पे, नहीं जाना चाहिए। रूप गोस्वामी कह रहे हैं बीवेयर, बच के रहना। तो एक भक्त से हमने पूछा ऐसा कैसे है, सब लोग गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं उसके बाद वापस घर जाते हैं, नौकरी भी करते हैं। कह रहे देखो जी, भक्ति दर्शन करते हैं उनका, और भक्त जहां भी रहता है वहां पर भौतिकता नहीं होती, आध्यात्मिकता होती है। तो फ्रॉम वन अध्यात्मिक होम टू अनदर अध्यात्मिक होम, तो भौतिकता में वो प्रवेश ही नहीं करता अगर किसी ने एक बार गोविंद देव जी का दर्शन कर लिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दिल्ली जाए, लेकिन दिल्ली में कौन सी दिल्ली में जाए? आध्यात्मिक दिल्ली में जाए, अपने घर जहाँ पर विग्रह विराजमान है, जहाँ कृष्ण भक्ति विराजमान है, वहां जाना है, भौतिक संसार में नहीं। तो गोविंद देव जी का जिसने एक बार दर्शन किया, उसका टीवी फिल्म पिक्चर सबसे मन खत्म हो जाएगा। तो अब कोई पिक्चर देखना चाहता है तो उसे गोविंद देव जी नहीं देखने चाहिए। और मदन मोहन जी, जिसके हृदय में बहुत सारी काम वासना है, जिसके हृदय में अभी संसार को भोगने की इच्छा है, उसे मदन मोहन जी का दर्शन नहीं करना चाहिए। अब आज जिन्होंने कर लिया, अब आप लोगों को सॉरी टू से, काम अब आपको नहीं सता सकता। पूरे जीवन के लिए आपका काम आपने समाप्त कर दिया, क्योंकि भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव। कामदेव का एक अंश, जब मदन मोहन का एक अंश कामदेव में प्रवेश करता है, और कामदेव का एक अंश जब किसी स्त्री में प्रवेश करता है, तो वो मिस यूनिवर्स बन जाती है। जब कृष्ण का एक अंश कामदेव में प्रवेश करता है, कामदेव का एक अंश जब किसी स्त्री में प्रवेश करता है, तो वो मिस यूनिवर्स बन जाती है। हाँ, तो सोचिए कि अगर मदन के अंदर पूर्ण अंश है, जो कि उसके एक अंश से कोई मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बन सकती है, तो कृष्ण के अंदर क्या होगा? कंदर्प कोटि कामिया विशेष शोभम गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कृष्ण मदन मोहन का दर्शन करने के बाद व्यक्ति की स्त्री आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तो पति देव को पत्नी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से है कि भगवान मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी का क्या नाम है? मदन मोहन मोहिनी। वो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती हैं, और इसी चीज को समझने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो राधा मदन मोहन देव की, राधा गोपाल जी की, राधा सखी की, पतिता पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। और कथा या समाप्त? हाँ, सुनाया ना अभी? वो बाटी वाला किस्सा सुनाया ना आपको, मिट्टी की बाटी खिला रहे मदन मोहन जी को। और ये देखिए ऊपर तीनों विग्रह हैं आपके, संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध स्थापित है राधा मदन मोहन, फिर अभिधेय राधा गोविंद देव, और फिर प्रयोजन है राधा गोपीनाथ जी। तो तीनों देखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन गोपाल जी जिन्हें प्रेम होता है वो बता सकते हैं। तो जब जैसे ना सरदार लोग होते हैं ना, वो देखने में सारे एक जैसे लगते हैं। लेकिन मैं एक बार सोच रहा था, पत्नी को कैसे पता चलता है मेरे वाले सरदार जी कौन से? तो जिन्हें पता होता है, जो रहते हैं सारा दिन, उन्हें पता होता है। तो जो इन विग्रहों को रोज देखते हैं ना, वो बता सकते हैं मेरे वाले कौन से हैं। तो वो बता देंगे गोपीनाथ कौन है, गोविंद देव कौन है, मदन मोहन कौन है। लेकिन जो कभी कभी दर्शन करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कौन से। अरे दिखने में तो सारे जैसे, अरे खामा का वही काले वाले, वही लाल आंखें, मोटी मोटी आंखें, वही तो वहां से, इनके लिए इतनी दूर क्यों लेके चले गए हमको करौली, कमर तोड़ दी हमारी। अरे अच्छा वहीं बिता दे जयपुर, प्रभु जी बिना दिमाग नहीं इनके। तो वैसा है, लेकिन जिन्हें फर्क पता है वो अलग अलग है, तीनों में अलग भगवान, भगवान का अंश अलग अलग विराज। तो सनातन गोस्वामी के बारे में सुनना चाहते हैं थोड़ा या ज्यादा? आवाज नहीं आ रही, लोग भूखे हैं, मेरी गलती नहीं है अभी, जिन्हें भूख लग रही है बेचारे। हाँ, कैन वी कंटिन्यू फॉर सम टाइम? शॉर्ट में या शॉर्ट में कर लेते हैं? ठीक है। तो सनातन गोस्वामी जो है, उनका नाम था पहले संतोष।
अच्छा, फिर बाद में मुस्लिम।
हाँ, तो संतोष नाम था उनका। संतोष एक ब्राह्मण थे, साउथ इंडियन ब्राह्मण, और भगवान की लीलाओं में उनका नाम है रति मंजरी, या फिर लबंग मंजरी भी कहते हैं उनको, रति मंजरी या लबंग मंजरी। तो संतोष नाम था उनका, साउथ इंडियन ब्राह्मण थे। लेकिन जैसे हम जॉब के सिलसिले में वेस्टर्न बन जाते हैं इंडियन से, वैसे ही सनातन गोस्वामी जॉब ढूंढते ढूंढते हम बंगाल में आ रहे हैं। बंगाल में आके राजा नवाब हुसैन शाह था। नवाब हुसैन शाह ने उनको अपने आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब उनको रूप गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तीनों भाई थे, और इस तरह से ये सदाचारी पंडित थे। लोगों को, ब्राह्मणों को दान देते थे, कोड़ियों को दान देते थे और घर गृहस्थी का जीवन चला रहे थे। एक दिन उनको भगवान ने सपने में कहा कि तुम क्या करो, सन्यासी बन जाओ और इस भौतिक संसार को छोड़ो और वृंदावन आओ। तो दोनों बड़े परेशान थे कि कौन सा दिन आएगा जब हम इस संसार को त्याग करके वृंदावन धाम जाएंगे। लेकिन नवाब हुसैन शाह क्या फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसके शर्त थी, नौकरी तब दूंगा जब जाति बदलोगे। तो इन्होंने नाम के लिए जाति बदल ली थी। संतोष से बन गए थे क्या सरकार मलिक, और रूप गोस्वामी बन गए थे दबीर खास, साकार मलिक और दबीर खास। तो ये साकार मलिक जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और दबीर खास प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे और अब ये चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हो चुके हैं, उनका साक्षात्कार करना चाहते थे, उनका संग चाहते थे। उनको कई बार लेटर लिखे कि आप हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें दीक्षा दीजिए और हमें वृंदावन धाम ले चलिए। लेकिन काम के सिलसिले में चैतन्य महाप्रभु लेटर लिख के वापस रिप्लाई करते थे, नहीं नहीं आप लोग अभी अपनी जॉब करते रहिए। जॉब के टाइम पे भी सरकार साकार मलिक और दबीर खास क्या करते थे कि ना छुट्टी ले लेते थे ऑफिस से झूठ बोल के। वैसे हमारी भी इसमें बहुत सारे लोग बिना बताए या झूठ बोल कर आ गए, घुमा रहे हैं, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, मीटिंग कल है, आज है, बहुत बिजी हूँ, कोई एडमिट है, कजिन की डेथ हो गई है, तो जो भी। तो इस तरह से गलत नहीं है झूठ बोलना, बहुत सारे जिन्हें पता सब हंस रहे हैं। तो इस तरह से वो भी झूठ बोलकर घर पे रहते थे और क्या करते थे, एक दिन रूप गोस्वामी कथा करते थे 7 दिन की भागवत कथा, और सनातन गोस्वामी सुनते थे, और फिर अगली बार सनातन गोस्वामी कथा करते थे, रूप गोस्वामी सुनते थे, और बोलते क्या थे, हमारे पेट में दर्द है, लूज मोशन हो गए और हम घर से बेड से हिल नहीं पा रहे हैं, हमें वात रोग हो गया, पित्त रोग हो गया, कफ रोग हो गया, जो भी लिख देते थे। अब टेलीफोन नहीं था, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, तो नवाब हुसैन सोचता था फाइनेंस मिनिस्टर झूठ थोड़ी बोलेगा, इतना भी खराब नहीं है, देखने में तो ठीक ठाक है, बेचारे ब्राह्मण थे, मुसलमान बन गए, बहुत सेवा करते हैं और बड़े अप टू डेट थे अपनी सेवाओं में, एकदम परफेक्शन था सेवा के अंदर। इसलिए भक्तों को भौतिक संसार में भी परफेक्ट होना चाहिए, है ना, डिवोटी शुड बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। तो एक दिन उन्होंने सैनिकों को भेजा कि क्या बीमारी है इनके पेट में, हर बार पेट खराब हो जाता है इनका। तो जब देखने भेजा तो सैनिकों ने आके बताया, अरे पेट वेट खराब नहीं, वहां तो कुछ अलग ही माहौल है। कह रहे क्यों? कह रहे एक बाबा जी ऊपर बैठे हैं, बाकी लोग नीचे बैठे हैं और बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो इस तरह से उनको पता चला तो उनको जेल में डाल दिया गया और कहा कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतने में आप बेचारे सोच रहे थे कैसे भागे नवाब के यहाँ से, तो जो जेलर था उसको बुलाया, मुसलमान था, उसे पता था ये सच्चा मुसलमान है, हम तो नकली वाले हैं। कह रहे कि ये ना अगर हम तुम्हें कुछ पैसे दें तो तुम हमें छोड़ दोगे? कह रहे हाँ पैसे पे तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। कह रहे कितना पैसा दोगे? कह रहे तुमको कितना चाहिए हमें छोड़ने के लिए? उसने कहा इतना पैसा चाहिए, जितना चाहिए था उतना उन्होंने उसको दिया और देने के बाद में वहां से चल दिए। तो बताते हैं कि जब सनातन गोस्वामी पहले उस स्थान से निकले, जब सनातन गोस्वामी आए तो उनके पास एक नाव होती है ना बड़ी वाली जिसमें आराम से 50-60 लोग बैठ जाए, बड़ी नाव, उस नाव में ऊपर तक ढेर लगा हुआ था सोने के सिक्कों का। वो इतना उनके पास ऑपुलेंस था, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे मान लो आज पी चिदम्बरम रिजाइन दे दे तो कितना पैसा होगा उनके पास। तो इस तरह से इतना फाइनेंस मिनिस्टर के पास इतना सब कुछ था और उन्होंने सब कुछ अपने रिश्तेदारों में, जरूरतमंदों में, वैष्णवों में, मंदिरों में दान दे दिया। कहा कि अब मैं महाप्रभु से मिलने जाना हूं तो मेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो महाप्रभु से मिलने आते हैं तो एक स्थान था जिसका नाम था रामकेली में वो आते हैं और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको नाम देते हैं कि अब से साकार मलिक का नाम है सनातन और दबीर खास का नाम है रूप गोस्वामी। तो इस तरह से और उनको शिक्षा देते हैं कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है। तो जब ये भाग कर वृंदावन जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर के अनुसार जेल से भाग करके, तो ये एक बिहार के रास्ते में, मतलब बंगाल से जा रहे वृंदावन तो जाना पड़ता है झारखंड के रास्तों से, तो बिहार का एक स्थान पड़ता था, वहां एक सराय थी और सराय में आकर रुक गए रात में। रात में रुके तो होटल जो मैनेजर था वो बड़ा चालू था, उसने कहा आज रात को खत्म, फिनिश करना है मुझे इनको, जैसे भी करके इनको फिनिश करना है, क्योंकि बड़ा तेज है इनके चेहरे पे और पता चला है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है और भाग कर आया है वृंदावन जा रहा है। उसके पास सारे खबरी थे उसके, सब बता देते थे, रात को मारूंगा तो कितना सोना मिलेगा। तो इनका एक सर्वेंट था जिसका नाम था ईशान, तो ईशान को उन्होंने कहा था हम सब कुछ त्याग कर वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन ईशान जो था उसने सोचा ये तो वैरागी है ना, जैसे हम बोलते हैं कि भक्तों को प्रभु जी ऐसा मत करो, तो आश्रय वाले भक्त बोलते हैं ये सारी चीजें प्रभु जी के लिए, बाकी आधी चीजें हमारे लिए। तो ईशान ने भी बोला ये सब कुछ सनातन के लिए, मेरे लिए कुछ पैसे रख सकता हूँ, तो उन्होंने 7 सिक्के अपनी जेब में डाल लिए और सोने के सिक्के लेकर साथ में चले। अब जो वो व्यक्ति था, ज्योतिष भी बहुत तगड़ा था, उसे पता था कि इनके पास पैसे हैं और इसीलिए वो अब उनको 7 सोने के सिक्के के लिए मारना चाहता। तो रात्रि में ही सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी भी हम कुछ अपने साथ कैरी कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारे चेहरे पर डर आ रहा है। सोचो आप, 7 सोने के सिक्के से डर आ रहा है चेहरे पे, तुम्हारा मन अभी भगवान के नाम में, मेरे साथ वृंदावन का जो आनंद है ना वो नहीं आ रहा, चेहरे में शिकन आ रही है। जैसे जब हम आके बैठे थे तो सब एंथुसियास्टिक का चेहरा, जैसे जैसे कथा का टाइम बढ़ रहा है, प्रसाद का विरह आ रहा है, तो चेहरा लूज होने लगता है। तो एक्चुअली कहीं हम अटक जाते हैं तो हमारा उत्साह समाप्त होता है, तो उसका उत्साह नहीं था क्योंकि उस 7 सिक्कों में अटका हुआ था। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम वृंदावन जाना चाहते हो तो उसकी योग्यता एक है कि सब कुछ त्याग कर वृंदावन जाओ, ऐसे नहीं पॉकेट भर के शॉपिंग करने लोही बाजार में, धोती कुर्ता खरीद लो पॉकेट भर, गाड़ियां लेकर फ्लाइट के टिकट लेकर धाम में एंट्री, वैसे नहीं। कैसे जाना चाहिए, बिना किसी पैसे के, भक्तों के संग में शिक्षा प्राप्त करने के वास्ते। तो इस तरह से जब उन्होंने प्रवेश किया तो ईशान ने सारे सिक्के यमुना नदी में, गंगा नदी में फेंकवा दिए। तो इस तरह से जब उन्होंने त्याग दिया, फिर भी एक सिक्का उसने बचाया था जिसे वहां सनातन गोस्वामी ने बाद में उसे फेंकवा दिया था। तो इस तरह से वो चलते रहे और रास्ते में वो अपने साले से भी मिलते हैं जिनका नाम था श्रीकांत, जो हाजीपुर में रहते थे, है ना, और उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी सेवाएं दी थी और उनसे मिलकर भी वो अपना यात्रा कंटिन्यू किए। अब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से वापस, उस समय महाप्रभु भी वृंदावन में थे, अब महाप्रभु वृंदावन से रिटर्न कर दिए और कहाँ चले गए, बनारस। तो इन्होंने सोचा कि अब बनारस में मिल लेना चाहिए। तो ये वहां पर एक भक्त थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, जो कि एक मुसलमान थे, और उनके घर पर ये पहुंचते हैं, चंद्रशेखर के घर पे। और इनका हालत ऐसी थी उस समय, चंद्रशेखर मुसलमान नहीं थे, सॉरी चंद्रशेखर जो थे शायद मुसलमान थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो चंद्रशेखर एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, उससे क्या फर्क पड़ता है कोई हिंदू या मुसलमान, भक्त थे तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो इन्होंने वहां पर चंद्रशेखर के घर पहुंचे और कहा मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हालत कैसी है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, तो भगवान से जब मिलने जाएं तो हमें वैष्णव वेशभूषा में जाना चाहिए, गोपी ड्रेस हो, हमारी धोती कुर्ता हो, शेव किया हो, माताओं ने नहीं प्रभु ने, हेड शेव हो तो और भी अच्छा है, छोटे बाल होने चाहिए, वैष्णव वेशभूषा। तो वैष्णव त्याग दिखाता है अपने हर एक चीज से, दिखाता है मैंने कपड़ों को त्याग दिया, बाल की आसक्ति को त्याग दिया, क्योंकि कलयुग में लावण्य केश धारणम, लंबे लंबे बालों को फैशन माना जाएगा। तो ऐसे करके कथा करते हैं ना तो बढ़िया लगता है। मैं किसी को बोल रहा था, मैंने कहा हम भी कथा करते हैं, अरे आप कथा करते हैं, आपके तो बाल ही नहीं है। मैंने कहा कथा बाल से थोड़ी होती है, मुंह से होती है, हृदय से होती है। अरे नहीं नहीं बाल नहीं होते तो कथा ही नहीं होती, आजकल तो सारे कथावाचकों के बाल होते हैं, जिसके लंबे बाल नहीं वो कथावाचक नहीं। कह रहे विग पहन लिया करो, मैंने कहा नहीं इतनी जरूरत नहीं। तो लावण्य केश धारणम भागवतम कहता है लंबे बाल से सुंदरता आती है, लेकिन वैष्णव कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सुंदरता नहीं चाहिए, हमें तो वैराग्य चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से उनकी भी सारी कुछ शेविंग करी गई, उनके सारे फाइनेंस मिनिस्टर वाले कपड़े उतारे गए, लेकिन फिर भी एक ऐसा कंबल था शॉल जो कि बहुत कीमती था, और जब ये चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए प्रथम बार तो नीचे धोती है, ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ, तिलक धारण है, जनेऊ धारण है, हेड शेव है और यहाँ पर एक शॉल डाला हुआ है, जैसे कई लोग डाल लेते ना उत्तरिया स्टाइल में, स्टाइल में आपने नहीं डाला तो स्टाइल में तो ऐसे हाँ नीचे तो उत्तरिया डालते हैं ऐसे स्टाइल में, तो उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड डिवोटी रहता है, हम भी डालते ऐसे। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जो थे अपग्रेडेड स्टाइल से ऐसे लगा के चले। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद पा रहे थे, अभी कुछ नहीं बोले ना कोई शिक्षा दी, जैसे आप मिलो आप मेरे से और आप बोलो हरे कृष्ण प्रभु जी, तो आपको क्या हो गया देखोगे ना आप ऐसे। तो सनातन गोस्वामी ने भी दंडवत प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, और महाप्रभु ने उस तरह से नहीं लगाया जिस तरह राम के लिए मैं गले लगाया था, क्या हो गया पता नहीं, वो देख रहे थे उनके शॉल ऐसे, तो उन्होंने कहा शॉल में कुछ लगा है, तो वो बहुत महंगा था, उन्होंने कहा सब कुछ त्याग दिया वृंदावन जा रहे हो और अभी शॉल है, हटाओ इस शॉल को, उनका कहना था लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो वो समझ गए सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने देखा एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति उसका फटा हुआ कंबल और पानी पी रहा था गंगा के किनारे, उसके पास गए बोले भैया हाँ मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और उसके बदले कुछ चाहता हूँ। कह रहे क्या देना चाहते हो और क्या चाहते हो? कह रहे अगर मैं ये अपना कीमती खादी का पश्मीना शॉल तुमको दूँ तो क्या तुम मुझे अपना शॉल दे दो? कह रहे हाँ जी हाँ, फटा हुआ कीड़े लगे हुए, ले लो ये दे दो। उसने तुरंत गरीब ने ले लिया और ये फटा पुराना, अब जब ये फटा पुराना पहनकर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के सामने आए, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उन्हें तो रंच मात्र भी आसक्ति जो है वो हमारी दिक्कत दे सकती है। तो इस तरह से तपन मिश्रा के घर में ये लीला महाप्रभु ने करी। और जब सनातन गोस्वामी चल रहे थे वृंदावन की ओर तो उन्हें पता चला उनके जो बड़े भाई थे अनुपम, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिनके बेटे थे जीव गोस्वामी, जिनके राधा दामोदर विग्रह है। और इस तरह से वो वृंदावन पहुंचे और वहां पर सुबुद्धि राय से मिले। किससे मिले?
सुबुद्धि राय।
सुबुद्धि राय की बड़ी अच्छी कथा है, थोड़ी सी देर, ज्यादा देर नहीं करूंगा आपको, बस छोटे से शॉर्ट में सुनाऊंगा। सुबुद्धि राय जो थे वो महाप्रभु के टाइम के समय में मतलब रहे हैं, सुबुद्धि राय ये बंगाल में रहते थे और राजा हुसैन शाह से पहले ये राजा होते थे। सुना है आपने? सुबुद्धि राय राजा हुसैन शाह जो था ना नवाब, उससे पहले के राजा वो थे। लेकिन अभी वृंदावन में क्या कर रहे हैं, बनारस में क्या कर रहे हैं वो? तो पता चला कि सुबुद्धि राय जब राजा थे बंगाल के तो नवाब हुसैन उनका नौकर था, उनके घर में झाड़ू पोछा करना ये सब काम करना, और झाड़ू पोछा करते 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 वो बूढ़े हो गए और अपना प्रेम के कारण सब कुछ उसको दे गए और नवाब हुसैन अब राजा बन गया। तो एक दिन नवाब हुसैन की पत्नी ने पूछा कि जब आप कपड़े बदलते हैं ना तो आपकी पीठ पे बड़े निशान दिखते हैं, ये कैसे निशान है? तो सुबुद्धि राय ने कहा कि जब मैं छोटा था ना तो मुझे सुबुद्धि राय नवाब हुसैन ने कहा जब मैं छोटा था ना तो सुबुद्धि राय ने मुझे कुआं खोदने के लिए कहा, और जब मैं कुआं खोदने में देरी कर रहा था तो उसने हंटर लेकर डंडियों से शंटी लेकर मेरी पिटाई करी। उसने कहा अच्छा एक बार मारा? एक बार नहीं, रोज मारता था मुझे। कह रहे अच्छा। अब पत्नी रोने लगी और उसको भड़का दिया, पत्नी भड़का देती है ना, भड़का दिया उसको। अच्छा आपने करना था क्या? आपने बदला नहीं लिया, तोड़ दो उसको, मोड़ दो उसको, आप राजा हो, उसे दिखा दो आप राजा, उसको भड़का दिया पूरा। सुबुद्धि राय बोला और नवाब हुसैन बोला चाहे कुछ भी हो, उन्होंने मुझे बचपन से पालकर बड़ा किया और राजा बनाया, मैं उनको मार नहीं सकता हूँ। अच्छा मार नहीं सकते तो मारने से नीचे वाली कैटेगरी का कुछ अपराध कर दो उनके साथ में। क्या करे क्या करे, दोनों सोच रहे अपराध कैसे करें इनके साथ में, इनको कैसे मारे, मतलब मर भी जाए और मरे भी नहीं, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने कहा ये हिंदू है सुबुद्धि राय, और हिंदू के लिए ये सबसे खतरनाक बात होती है कि उसकी जाति बदल जाए, है ना? जैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी भी बड़े रोते थे कि उनका नाम बदल गया है, जैसे वैष्णव है ना, सारे वैष्णव ये सोचते कब मेरा नाम बदल जाए, ये भौतिक संसार का नाम जाए, है ना, मेरा नाम है जो है सौरभ से हो जाए सनातन प्रियदास, ऐसे मेरा कोई नाम हो जाए। तो इस तरह से हम सोचते रहते हैं कब मेरा, ऐसे इच्छा होती है कि कब मेरा नाम बदले, और किसी का नाम वैष्णव से बदलकर वापिस हो जाए, किसी का नाम चिंकू पिंकू पिंकी टिंकी ऐसा हो जाए तो मैं तो बड़ा दुखी होगा, अरे मेरा नाम बदल गया। तो सुबुद्धि राय को उन्होंने कहा नवाब हुसैन ने कि अगर मैं अपना पानी पीऊं झूठा और पानी का झूठा लेकर इसके ऊपर डाल दूं तो ये मुसलमान बन जाएगा, तो 500 साल पहले बहुत ज्यादा जात पात को लेके झड़ाई झगड़े होते थे। तो सुबुद्धि रॉय के सामने वो गया और नवाब हुसैन को देख के सुबुद्धि रॉय ने कहा, नवाब तुम कैसे मिलने आए, बंगाल की घटना है। कहा, मैं मिलने नहीं आया हूं, आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ। कह रहे, कैसा थैंक यू? पानी पिया, थोड़ा झूठा निकाला और कहा, ये ले बन गया तू मुसलमान। अब तो सुबुद्धि रॉय रोने लगा, ये क्या किया तुमने, मेरा ब्राह्मण धर्म समाप्त कर दिया। और बहुत दुखी हुआ कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो सारे ब्राह्मणों के पास गया, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कहते हैं, अब वो सोचने लगा कि मैं वापस ब्राह्मण कैसे मरूं। तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रायश्चित पूछिला तेनो पंडितेरे गणे। प्रायश्चित पूछने गया पंडितों के पास, प्रायश्चित पूछिला तेनो पंडितेरा गणे, ताहारा कहे तप्त ग्रहत खान छड़ा प्राणे। उन्होंने कहा, तप्त ग्रहत खान, गरम गरम घी पी लो। अब गरम गरम घी पी के तो क्या होगा, तप्त ग्रहत पान छड़ा प्राणे, अपना प्राण छोड़ दो, यही तरीका है। अब तुम वरना अब क्या होगा, जब तुम मर जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, वरना जब तक ये शरीर में हो मुसलमानी कहलाओगे, और अगर घी नहीं पियाना तो तुम्हारे पाप का भी प्रायश्चित नहीं होगा। अब तो ये सोचने लगा, भैया मरना पड़ेगा तो क्या गड़बड़ हो गई। तब इसी समय में महाप्रभु बनारस आए थे। तब यदि महाप्रभु वाराणसी आईला, महाप्रभु कहाँ आए थे, वाराणसी, ताहारा मिली राय अपना व्रतांत कहिला। और महाप्रभु को सुबुद्धि राय ने अपना सारा व्रतांत कहकर सुनाया, कहा कि मैं आया हूं, ऐसा ऐसा हो गया, महाप्रभु मुझे बताइए। तो भक्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसके अंदर महाप्रभु ने दिया। कई लोग बोलते हैं, पता है आपको, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए प्रभु जी, आपको पता है प्रभु जी, मैंने ना अपने जीवन में भरपूर पाप किए, अभी आपको नहीं पता मैं अब भी बड़े पाप करता हूँ प्रभु जी, यू डोंट नो मी प्रभु जी, यू डोंट नो मी प्रभु जी, यू डोंट नो मी प्रभु जी, ऐसे बोलते हैं। तो एक्चुअली उनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया यहाँ महाप्रभु ने, प्रभु कहे यहाँ आई थे जहाँ वृंदावन, क्या कहे, प्रभु कहे यहाँ आई थे जहाँ वृंदावन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। क्या कहा, जाओ वृंदावन और जाकर क्या करो, नाम संकीर्तन, कैसे करो, निरंतर, सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम अभ्यंतते। जो सतत कीर्तन करेंगे उनको मैं बुद्धि प्रदान करूंगा, उन्हीं का योगक्षेम वहां हम, मैं उनका योगक्षेम वहां करूंगा। भगवान ने अनेकों स्थानों में बोला निरंतर भजन करना चाहिए, तो इस तरह से उनको कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि नाम संकीर्तन करने से क्या मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, नाम संकीर्तन करने से क्या मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महाप्रभु ने कहा, एक नाम बास तुम्हारा पाप दोष जय बा, एक बार अगर बोल दिया तुमने, एक बार नाम बास तुम्हारा पाप दोष जाई बे, आर नाम लेते कृष्ण चरण पाई बे। एक बार नाम लेने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम बार बार जो जप करते हैं उससे क्या होता है, एक नाम भास तुम्हार पाप दोष जाइबे, आर नाम लेते श्री कृष्ण चरण पाइबे। तो अभी हम जो जप कर रहे हैं पाप नाश करने के लिए नहीं, पाप तो आपके उसी दिन समाप्त हो गए थे जो आपने किए हैं या जो करने की आप सोच सकते हो, सब नष्ट हो जाते हैं जिस दिन आप पहले दिन बोलते हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। तो इस तरह से उनको उन्होंने आदेश दिया और सुबुद्धि राय वृंदावन जाकर भगवान के नामों का संकीर्तन करने लगे। इस तरह से बहुत लंबी कथा है सनातन गोस्वामी के जीवन से। एक बार हरिदास ठाकुर से वो मिलते हैं और उनसे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर के घर पे वो मिलते हैं और कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा दुखी हूं कि मेरे शरीर में क्या हो गया है, एक्जिमा डिसीज हो गया है। एक्जिमा को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्जिमा, हाँ, कोड नहीं, कोड नहीं होता, कोड इज लेप्रोसी,
लाल हो जाती है ना स्किन, बिल्कुल लाल,
एक्जिमा, एक्जिमा
स्केचिंग होती है, बहुत
सोरेसिस, दाद नहीं, दाद इज सोरेसिस भी, मतलब दाद है उसके बाद सोरेसिस है उसके बाद एक्जिमा है, मतलब इतने बड़े बड़े लाल लाल स्किन रैशेज होते हैं, उसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। तो कीड़े खाते थे उनके शरीर को, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे थे तो जीव जंतु को मारते नहीं थे, जीव जंतु उन्हें काट ले तो उन्हें मना नहीं करते थे, और बीमार हो जाते हैं भक्तों, अपने अपने शरीर के इलाज के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। अगर अभी शरीर ठीक हो जाएगा तो पाप के निवृत्ति के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना, तब पाप कटेंगे। तो इसी जन्म में कट जाए, जितने दुख आए ना थैंक यू बोला जाओ, थैंक यू वन मोर, थैंक यू कृष्णा, एक और थैंक यू, सारे काट दो और चाहिए नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में तो हम आना ही नहीं चाहते हैं, जो पाप काटने अभी काट दो बस हमारे, जस्ट नाउ, एक ही बार में। तो इस तरह से प्रार्थना करते रहे और उन्होंने क्या किया, जब कीड़े थे वो कई बार इतना पस पड़ जाता था कि फोड़े में से कीड़े निकलकर बाहर गिर जाते थे, तो जब कीड़े निकलते थे ना तो कीड़ों को उठाकर वापस फोड़े में रख लेते, तो लोग बोलते थे अरे क्या कर रहे हैं सनातन, ये क्यों रख रहे हैं, कह रहे भगवान की इच्छा से इस फोड़े के अंदर इस जीव का खाना है, है ना, भगवान की इच्छा से, उसकी इच्छा से दाना दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, है ना, तो ये खा रहा है, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो मैंने भगवान की इच्छा के अंदर क्या किया, विरोध किया है, तो मैं भक्त नहीं कहलाऊंगा। तो वो कहते थे खाने दो, कीड़ों को खाने देते, दर्द होता था, पीड़ा होती थी, फिर उन्होंने सोचा कि जब भक्त मेरा आलिंगन करते हैं तो उनको भी हो जाएगा डिसीज, तो अब उनके भक्तों की भावना से उन्होंने क्या सोचा, मैं जगन्नाथ रथ के नीचे अपने शरीर को त्याग दूंगा, और जगन्नाथ पुरी में उन्होंने सोचा जगन्नाथ रथ के नीचे, लेकिन चेतन महाप्रभु तो भगवान है, वो जान गए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक दिन बुलाया और कहा सनातन तुम कैसे अपने शरीर का त्याग कर सकते हो, सुसाइड, ये शरीर किसका है,
कृष्णा
का, हम किसके हैं,
कृष्णा,
तो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन भगवान की इच्छा के बगैर, गुरु की इच्छा के बगैर अगर करते हैं तो हम भक्त नहीं है, अगर तुम भक्त हो तो तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे गुरु का है, तुम्हारे भगवान का। तो उन्होंने कहा आप मेरे गुरु, आप बताइए क्या इच्छा है आपकी, मेरी एक इच्छा है आओ मेरे गले लग जाओ। तो सनातन गोस्वामी और चेतन महाप्रभु ने आलिंगन दिया और आलिंगन देते ही उनके शरीर का एक्जिमा हरिव, ये महाप्रभु की कृपा है, अहेतु की कृपा, बिना किसी हेतु के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहे 100 अपराध करो, जो 100 अपराध करने की सोचोगे, जो 100 अपराध तुम कर चुके हो और जो कर रहे हो, उन सभी के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरकृषे नमः। महावदन्नाय, इससे ज्यादा और दयालु कोई होगा, किसी की बीमारियां समाप्त कर दी, जगाई मदाई के सारे पाप अपने लिए ले लिए, गोरे रंग का शरीर काला पड़ गया पूरा, क्यों सारे पाप जगाई मदाई के अपने ऊपर ले लिए, हाँ, तो ऐसे कौन हो सकता है, एक भक्त हो सकते हैं और भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं। भौतिक संसार के लोग तो कहते हैं मेरी प्रॉब्लम ले लो, यहाँ पर कैला देवी में जाते हैं लोग, क्या मेरी प्रॉब्लम ले लो, लेकिन यहाँ भक्त कहते हैं अपनी प्रॉब्लम मुझे दे दो, मैं मरूंगा जीऊंगा बस आप सबकी प्रॉब्लम मुझे दे दो, आप सब जाओ भगवत धाम, मैं यही रहूंगा, ये भक्त का इच्छा है, गुण है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने मना किया और फिर बाकी कथा तो आपको हमने बताई कि किस प्रकार से उन्होंने सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी विग्रह की सेवा करी है और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति करी। जब वो वृंदावन पहुंचे तो वहां पर वनखंडी महादेव मंदिर में बैठकर, कभी चकलेश्वर महादेव में बैठकर भजन किया करते थे सनातन गोस्वामी, लेकिन जब वो भजन करते थे तो मच्छर बहुत आते थे, तो हमारे भी बस में मच्छर थे, तो हम लोग क्या लेके आए थे प्रभु जी, ओडोमॉस। लेकिन उन्होंने कहा भक्त के पास एक ही बीमारी की इलाज है, क्या है, भक्त के पास बीमारी का एक ही सॉल्यूशन, क्या, भक्त। तो किसके पास गए, वैष्णवानाम यथाम शंभु, शिव जी के पास गए और वहां जाकर बोले कि शिव जी आपकी इच्छा से ही कोई व्यक्ति भगवत धाम आ सकता है, वृंदावन में प्रवेश कर सकता है, आप नहीं चाहते तो मैं वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता, अब आप एक काम करिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं भजन करूं यहाँ रहूं तो मच्छरों के संकट को समाप्त करिए, अन्यथा मैं फिर जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ये बात बोलकर आए हैं और दूसरे दिन से सारे मच्छर गायब, मतलब पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ मच्छर है यहाँ मच्छर, लेकिन कोई मच्छर ऊन के ऊपर बैठे नहीं पा रहा, ऐसी कृपा उनको मिली। तो ये शिव जी की कृपा सनातन गोस्वामी को मिली है। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स लिखे सनातन गोस्वामी ने, पहला हरि भक्ति विलास और दूसरा बृहद भागवामृत, इस तरह के दो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए लिख कर दिए हैं शास्त्र। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जिनके विग्रह है भक्ति बृहद भागवत अमृत, इस तरह से दो उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो ये सनातन गोस्वामी इस तरह के हैं। जिन्होंने अपने जीवन चरित्र सिखाया कि किस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो हम यही समाप्त करते हैं सनातन गोस्वामी के बारे में, बहुत कुछ है। तो ये रस रस ये जो है रति मंजरी है या फिर लभांग मंजरी है भगवान की सेवाओं में, है ना। तो सनातन गोस्वामी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी कृपा से हमको क्या प्राप्त हुए, राधा
मोहन।
तो आज हम जो कुछ भी सुन पा रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ पा रहे हैं, इस सबके पीछे सनातन गोस्वामी का हाथ। 80 साल की अवस्था में रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे, रोज 80 साल की उम्र में। खाने पीने के लिए क्या, कभी दूध मिल गया तो पी लिया, पानी मिल गया तो पी लिया, नहीं मिला तो नहीं पिया। भगवान आकर बोलते थे बहुत हो गया, बंद कर दो। हमें भगवान आकर कहते हैं बहुत हो गया, टीवी बंद कर दो। हम फिर भी टीवी चलाते हैं। भगवान कहते हैं मेरा नाम जप करो। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्तुरो माम एवैशसी सत्यम ते प्रतिजारो प्रियसी मे। भगवान कहते मेरा जप करो, और हम कहते ना होए बे ना होए। भगवान कहते जपो हरे कृष्णा, भजो हरे कृष्णा, लो श्री कृष्ण का नाम। हमसे नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी सर, वी कांट डू इट। भक्तों को भेजते हैं, अब तुम ट्राई करो। मैंने तो ट्राई किया, चैतन्य रूप में आया तब भी नहीं माने, कृष्ण रूप में आया तब भी नहीं माने। अभी भक्तों को भेजता हूँ, तुम ट्राई करो। तो हम आते कहते हैं आइए हरे कृष्णा बोली माता जी, प्रभु जी हरे कृष्णा जप की है, कितनी माला की, 3-4 हो जाती है। प्रभु जी माला है आपके पास, नहीं अभी सोच रहे ले लेंगे। तो इस तरह से बिहेवियर है भक्तों का। तो सनातन गोस्वामी के हाथ से माला छीन लेते हैं, हरिदास ठाकुर के हाथ से माला छीन लेते हैं, बहुत हो गया जप छोड़ दो। हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं बहुत हो गया जप, चेतन महाप्रभु छोड़ दो। और वो क्या कह रहे हैं, खंड खंड जाए यदि प्राण तब अधि वदने ना छड़े हरि नाम। शरीर टूट जाए लेकिन हरि नाम नहीं छूटे। हम क्या कहते हैं, सब कुछ छूट जाए, हरिनाम भी छूट जाए, अब बस हमारा एंजॉयमेंट चलता रहे, है ना। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट मेंटेलिटी है गोस्वामियों से और हमारी। अगर हम सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, हरि नाम को तो ऐसे पकड़ के रखना चाहिए बस, है ना। कितना सारा कुछ बताया गया हरि नाम के लीलाओं के ऊपर, पूरा एक सेमिनार कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जीवन भर हरि नाम की ग्लोरी समाप्त नहीं होती, है ना। बहुत। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे, और परिक्रमा करते करते मई जून में, अभी रोज करेंगे तो मई जून तो आएगा 365 दिन, इतनी धूप में आपको बोला जाए परिक्रमा करनी है 40 किलोमीटर, अभी तो रिड्यूस हो गया है ना गोवर्धन, उस समय 40 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा थी, अभी कितनी है 21 किलोमीटर की। 40 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए बोल दिया जाए नंगे पाओ, खाने पीने को पानी नहीं, हम तो पहले कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी लेके चलेंगे बैग में, रिक्शा भी होगा, पॉकेट में पैसे भी होंगे। कहाँ जा रहे हैं, परिक्रमा पे जा रहे हैं, जूस ले ले, समोसे ले ले, पहले कचौड़ी खा लेते फिर चलते हैं। नंगे पांव बिना कुछ खाए पिए चलते थे, और बेहोश होकर गिर जाते थे, और स्क्रॉचिंग हीट धूप में पलटे हुए जमीन में, और एकदम तेज धूप, पसीना निकल रहा है, लोग कह रहे हैं पानी डाल दो पानी डाल दो, कोई बूढ़ा गिर गया कोई बूढ़ा गिर गया, पानी डाल, पानी डाला, उठे और फिर चलना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे भगवान तक जाने का ये रास्ता है, इस तरह चल रहे हैं। तो भगवान, अब भगवान कहते थे ओ माय गॉड, फिल्म नहीं, भगवान सच में बोलते थे ओ माय गॉड कैसा डिवोटी है, इतने दिन हो गए मना करते करते, सपने में आके बोला मानता ही नहीं, अभी साक्षात आके बोलना पड़ेगा। तो एक गोपाल का रूप लग के आया सनातन गोस्वामी को, बोले बहुत हो गया बाबा, अब तेरे बस का ना है, अब छोड़ दे जाए, छोड़ दे इसको गोवर्धन परिक्रमा को। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो परिक्रमा करूंगा, ये तो मेरे जीवन का प्राण है। अरे प्राण छूट जाएंगे बाबा, प्राण के चक्कर में छोड़ दो इसको। नहीं नहीं नहीं, मैं परिक्रमा नहीं छोड़ता। तो जब कई बार आने पर भी नहीं माने, रोज गिर जाते थे, लोग उठा उठा के कुटिया में पहुंचाते थे, अरे बाबा फिर बेहोश हो गया, अरे आज बाबा फिर बेहोश हो गया। तब तो सनातन बाबा का नाम जो था कि हो गया बाबा, आधी परिक्रमा में गिर जाता है, कभी एक चौथाई में गिर जाता है, बाबा मानता नहीं, रोज फिर चालू हो जाता है परिक्रमा करने के लिए। तो फिर भगवान ने कहा कि आज आना पड़ेगा, भगवान स्वयं सनातन गोस्वामी को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे को गोवर्धन शिला देता हूं, इस पर मेरा चरण का निशान है, मेरी गाय के खुर का निशान है, मेरी लाठी का निशान है, अगर तुम इसकी 4 परिक्रमा कर लोगे ना, तो अभी तुम्हें मैं गोवर्धन परिक्रमा का फल दे दूंगा। तो ये जो शाले का ये जो गोवर्धन शिला है, आज भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। तो भक्त जाते हैं, 4 परिक्रमा करते हैं, हरी बोल, फ्रूटी पी के आते हैं, समोसे खा के आते हैं, बढ़िया पेट भरा होता है, 4 परिक्रमा करी, हरी बोल। ये उनके लिए था जो कि गिर जाते थे, खाना नहीं खाते थे, 80 साल की उम्र थी उनके लिए था वो, हमारे लिए नहीं है वो। हमारे को तो वही 21 किलोमीटर की बिना कुछ खाए पिए नंगे पांव करनी चाहिए, तब जाकर कुछ कृपा मिले, तो हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है हमारे। ठीक है, तो ऐसे सनातन गोस्वामी हैं जिनके विग्रह हैं राधा मदन मोहन की, श्रील प्रभुपाद की, करौली धाम की, हिताय हिताय गौर हरि प्रेमानंद बंद हो गया, रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मेरा
रिकॉर्डिंग हुआ, रख रख लीजिए, रिकॉर्ड नहीं।